जुमेर साहब, वी आर लाइव अगेन। देखें, बड़ा जो है ना आपका तो लेट नाइट हो चुकी है। कोई रात की, मेरा ख्याल है क्या बज रहा है, कोई 2 बजने वाले हैं, मेरी दोपहर के 2 बजने वाले हैं या यूएस में। लेकिन हमने कहा यार, गैप काफ़ी हो गया, कोई आपकी भी कमिटमेंट्स थी, मेरी भी कमिटमेंट्स थी, तो हम टाइमली आ नहीं सके। लेकिन यार मैच को इतने मज़ेदार हुए हैं, इंडिया का भी पाकिस्तान का भी, तो हमने कहा थोड़ी सी ज़रा कैजुअल गपशप हो जाए। यार मुझे ये बताओ, क्या कमबैक मारा यार पाकिस्तानी बॉलर्स ने, हैं? मतलब 2 मैच
यार
हो गए हैं,
बेहतरीन
क्या कमबैक
कमबैक,
मारा है?
सही बात है, बेहतरीन कमबैक। बल्कि जब कल मैच हो रहा था तो मैं सोच रहा था यार कि पाकिस्तान का कोई सीन नहीं लग रहा था मुझे जीतने का। 150 रन पे यार, आप खुद सोचे इंग्लैंड कितनी टफ आपकी लाइनअप हो इंग्लैंड की। तो मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा खेला पाकिस्तान ने, और इसमें क्रेडिट जाता है, और ये वाली चीज में क्रेडिट जाता है बॉलर्स को, और खास तौर पे यहाँ पे मैं बोलूंगा कि बाबर आजम की कैप्टेंसी को भी क्रेडिट जाता है, कि
बिल्कुल
जिस तरह उसने अपने बॉलर्स को यूटिलाइज किया है, जिस तरह उसने कॉन्फिडेंस शो किया है बाकी बॉलर्स को, इफ्तिखार को, आमिर जमाल पे उसने इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस शो किया, तो ये काफी पॉजिटिव चीज है मेरे ख्याल में। बाकी देखें आप क्या कहते हैं इसके बारे में।
नहीं, बिल्कुल यार, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। 3-2 पाकिस्तान अब लीड कर रहा है सीरीज को। हमने बाबर की कप्तानी पे क्रिटिसिज्म भी किया है, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म ही किया है कि जी राइट टाइम के ऊपर राइट बैटर्स नहीं भेजता, राइट टाइम के ऊपर राइट बॉलर्स को यूटिलाइज नहीं करता। तो बैटिंग पे तो हम आएंगे, उसमें अभी स्टिल थोड़े से मेरे हिसाब से मसले मसाइल चल रहे हैं बैटिंग ऑर्डर में भी। लेकिन बॉलिंग में अगर आप देखो तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की उसने यूटिलाइज़ किया। उसने इफ्तिखार को भी बहुत अच्छा यूज़ किया, उसने नवाज़ को भी बहुत अच्छा यूज़ किया। शादाब की देखो वापस आने से कितना कंट्रोल मिला आपको। हालांकि
बिल्कुल
ये बॉलिंग एफर्ट इस वजह से बड़ी ज़बरदस्त है उमैर साहब, कि इतना लोएस्ट टोटल कभी कदाफी स्टेडियम में T20 आईज में डिफेंड नहीं हुआ, और
अच्छा
इतनी ज्यादा ड्यू गीली गेंद, और आपके स्पिनर्स जो हैं वो इतनी कंट्रोल से बॉल करते हैं, आपके फास्ट बॉलर इतने कंट्रोल से बॉल करते हैं, तो ये तो बहुत बड़ी बॉलिंग परफॉर्मेंस हो गई है इनएक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप से।
यार बिल्कुल सही बात है। ये लोग देखे ना, ना हमारे पास इस टाइम नसीम है, ना शाहीन था हमारे पास, ना ही हसनैन था। ठीक है, तो मेरे ख्याल में हम लोग, आपको याद होगा लास्ट एपिसोड्स में भी हम लोग यही बात करते थे कि मोहम्मद वसीम एज अ ऑलराउंडर ही ये लोग कंसिडर करेंगे, लेकिन एज अ स्ट्रीम लाइन बॉलर ले आए। और बल्कि लास्ट टाइम तो हमारी एक और भी काफी हॉट डिबेट हो गई थी आमिर जमाल के ऊपर, कि आप बोल रहे थे आमिर जमाल को चांस देना चाहिए देना चाहिए। तो देख ले बस, मेरे ख्याल में वो वाली हमारी डिबेट सुन ली है पीसीबी ने और बाबर आजम ने, और देखे वो फिर स्ट्रीम लाइन हो गया आमिर जमाल। मैं बड़ा इंस्पायर हुआ यार, बड़ा उसने अच्छी बॉल कराई है काफी। मतलब आप खुद सोचे, डेब्यू कर रहा है, पहले ओवर में विकेट लेना, फिर आखिरी ओवर आके कराना जब आपके सामने मोइन अली खड़ा है, तो
बिल्कुल
मेरे ख्याल में काफी ज्यादा क्रेडिट जाता है उसको। और मेरे ख्याल में बाबर आजम को भी बड़ी खुशी हुई थी, कि आपने देखा होगा कि जब आखिरी बॉल कराई तो बाबर आजम उसके पास भागता भागता गया,
नहीं,
तो वेल
बड़ी
डिजर्व्ड है यार।
बड़ी जबरदस्त यार। देखो हमने ये भी जिक्र किया था कि अबरार और आमिर जमाल ने बहुत कम मैचेस खेले हुए हैं, और फिर हमने उस पर थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी किया था, और फिर बाद में हमें मोहम्मद वसीम की जगह तरफ से जवाब भी मिला था कि भाई हम मानते हैं कि इन्होंने कम मैचेस खेले हैं, लेकिन हमें एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर और एक मिस्ट्री स्पिनर की ज़रूरत है, इस वजह से हमने इनको फास्ट ट्रैक किया। ठीक है, तो वो एक तो बात आ गई। अब इस पे क्रेडिट जाता है मोहम्मद वसीम को भी, मतलब हम उनको भी काफ़ी रगड़ते हैं, लेकिन आप मोहम्मद वसीम पे भी क्रेडिट दो कि उन्होंने चांस लिया डिस्पाइट
सही बात,
क्रिटिसिज्म, और फिर पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट को भी कि उन्होंने भी एटलीस्ट मौका दिया। अच्छा, मज़ेदार बात यह है, जब टीम प्लेइंग 11 अनाउंस हुई ना, तो मैंने कहा यार ये गलती कर दी इन्होंने कि ये सिर्फ 3 के साथ जा रहे हैं पेसर्स, जिनमें से 2 ऑलराउंडर्स हैं, तो मैं समझ रहा था कि ये आमिर जमाल को एज अ फोर्थ सीमर चांस देंगे, लेकिन उसको थर्ड सीमर चांस दे
बिल्कुल
दिया। अब आई डोंट नो कि वो फ्यूचर में कितना इसको चला सकते हैं इस तरीके से। कहीं ना कहीं मुझे लगता है हम एक पेसर शॉर्ट थे, और लेकिन यार आमिर जमाल ने ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दी है, आउटसाइड ऑफ स्टम्प यॉर्कर्स
बिल्कुल
लैंड करना गीली बॉल के साथ इतनी कंसिस्टेंटली, यार मैं कहता हूं उमेर साहब
बिल्कुल यार, उसके लिए अप्लॉज होना चाहिए। बिल्कुल यार सही बात है,
बेहतरीन बेहतरीन।
नहीं बेहतरीन यार, बेहतरीन। जिस तरह देखे ना, हमारे पास वो जो स्ट्रीमलाइन बॉलर्स थे नहीं, और मोहम्मद वसीम और आमिर जमाल ने बॉलिंग कराई, और आमिर जमाल स्पेशली के यार वो डेब्यू कर रहा है, तो मेरे ख्याल में काफी क्रेडिट जाता है उस चीज को। और साथ साथ मेरे ख्याल में बाबर आजम ने बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया। आपने देखा हारिस रऊफ थोड़ा एक्सपेंसिव हो रहा था, तो उसके अलावा मेरे ख्याल में सारे बॉलर अच्छे रहे। इफ्तिखार पे हम बात करते थे कि यार बाबर आजम को उस पर ट्रस्ट नहीं है, भाई छठा
बिल्कुल
बॉलर रखा हुआ है उसको यूटिलाइज तो करो, लेकिन शुक्र है यूटिलाइज किया। और मेरे ख्याल में जलाल एक और बड़ी अच्छी बात होगी कल के मैच में कि इन्होंने खुशदिल की जगह मेरे ख्याल में हैदर को ले आए, ठीक है, तो वो भी एक, ये भी अच्छा है कि रोटेशन पॉलिसी, इनकी जो रोटेशन पॉलिसी है उसको भी ये लोग साथ साथ मतलब वो यूटिलाइज करें, तो बड़ा अच्छा एक सीन है।
नहीं, बिल्कुल यार। देखो, रोटेशन पॉलिसी का हम काफ़ी जिक्र कर रहे थे कि आपके प्लेयर्स को चांस नहीं मिल रहा। आपने खुशदिल को काफ़ी लंबा रन दे दिया, तो हम लास्ट एपिसोड में भी यही बात कर रहे थे, आपकी और मेरी काफ़ी हीटेड बात चल रही थी कि अब खुशदिल को बिठाना चाहिए। मैं कह रहा था बिठा देना चाहिए, आप कह रहे थे कि अब उसको चांस
मैं
पूरा दे दें, ताकि आप भी ठीक
कह
कह रहे थे कि ताकि वो ना रहे कि कोई चीज़ की जी आपने पूरी इसको प्रॉपर चांस नहीं दिया। मेरी नज़र में
रहा
प्रॉपर चांस हो गया है। और अब मुझे ये लग रहा है उमैर साहब, अगर आमिर जमाल अगले 2 मैच खेलता है और उसमें किसी एक मैच में वो बैटिंग से भी परफॉर्मेंस दे देता है और बॉलिंग में भी कोई परफॉर्मेंस दे देता है, तो मुझे लग रहा है वर्ल्ड कप की टिकट जो है ना, खुशदिल वली आमिर
मिल
जमाल
जाएगी
को मिलने
इसको
वाली है। क्या कहते हैं?
यार, बिल्कुल हो सकता है जिस तरह आमिर जमाल ने खेला है। मेरे ख्याल में वो उसको उसको वहां पे चांस देना चाहिए अगर अगर अगले मैचेस में अच्छा खेल लेता है ये। अब यहाँ पे जलाल जो मुझे लग रहा है ना, जो थोड़ी सी ट्विस्टिंग चीज आने वाली है वो देखें, जो खुशदिल है वो भी सही परफॉर्म नहीं कर रहा, साथ हमने हैदर अली को देखा वो भी सही परफॉर्म नहीं कर रहा, तो अब वहां पे हमारे पास 2 टिकट्स हैं। अब देखते हैं कि इसकी जगह ये लोग किसकी जगह बनाते हैं।
हाँ नहीं, ये तो है। अच्छा, मोहम्मद अबू बकर साहब कह रहे हैं कि इंडिया ने कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, हमने शायद अपने थंबनेल के ऊपर लिखा है। तो उमैर साहब बताएं जरा अबू बकर साहब को।
बिल्कुल जी, जो इंडिया ने 2.3 बॉल्स पे इन्होंने जो पहली 5 विकेटें ली हैं ये
ओवर्स
इसका
में,
रिकॉर्ड है।
2.3
ओवर्स
ओवर्स
में,
में
हाँ, 2.3 ओवर्स में जो पहली 5 विकेटें ली हैं ये फर्स्ट टीम बनी है। इससे पहले जो था वो आई थिंक वो 17 बॉल्स था, तो ये इनका रिकॉर्ड है
तो
2 पॉइंट्स का।
पहली 15 गेंदों के ऊपर 5 आउट करना, ये पहले कभी नहीं हुआ T20 आई हिस्ट्री में। तो इंडिया की टीम वो पहली टीम बन गई है जिसने ये अचीव किया है। और मतलब उस पे भी आते हैं आगे हम, इंडिया वाले मैच के ऊपर जो स्विंग हुई है भाई बॉल, मुझे तो अंडर
यार मुझे
19
तो वो
वर्ल्ड कप
याद,
याद आ गया, अनवर
मुझे
अली की
तो
बॉलिंग।
यार अनवर अली की बॉलिंग, मुझे वसीम वकार के स्पेल याद आ गए यार, जिस तरह वसीम करता था, तो बड़ी अच्छी यार, कमाल। खैर वो क्रेडिट आपकी पिच को काफी ज्यादा जाता है क्योंकि शुरू के ओवर्स हमने देखा कि काफी स्विंग। खैर उस पे आते हैं, अभी पहले पाकिस्तान पे रहते और पाकिस्तान को जरा डिटेल में डिस्कस करते हैं। आप मुझे ये बताएं जलाल साहब कि हमने देखा जी मोहम्मद रिजवान थोड़े से इंजर्ड हो गए, ठीक है, और उन्होंने फाइनली डिसीजन ले लिया कि मैं थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ, उसकी जगह आए मोहम्मद हारिस। आपको उसकी कीपिंग कैसी लगी?
बेहतरीन कीपिंग की है यार उस बंदे ने, कीपिंग तो बड़ी सेफ है उसकी। और अब ये आर्गुमेंट जो आपने रेस किया था, जो शुरू में मैं जिस पे कह रहा था कि मोहम्मद हारिस रिजर्व्स में ही होना चाहिए, लेकिन अब आपका मुझे आर्गुमेंट बिल्कुल ठीक लग रहा है कि लेट्स से ऑस्ट्रेलिया में आपका इसी तरह रिजवान को कुछ हो जाता है जो वो मैच में कीपिंग नहीं कर सकता, आपके पास बैकअप विकेट कीपर स्क्वाड में ही नहीं होगा मेन 15 में, तो वो तो आप खिला ही नहीं सकते। पहले आप कह रहे थे खुशदिल से कराओगे, आप खुशदिल के भी पत्ता कटता हुआ दिखाई दे रहा है वर्ल्ड कप का, तो अब तो कोई सीन ही नहीं। अब तो लग रहा है कि आपको मोहम्मद हारिस को मेन 15 में डालना पड़ेगा, इस वजह से मुझे लग रहा है अब उस्ताद उस्मान कादिर का भी मुझे सीन ऑफ लग रहा है, शायद वो रिजर्व में चले जाए।
यार हो सकता है रिजर्व में चले जाए। अब तो शादाब मेरे ख्याल में फुल रिकवर कर गए, जिस तरह उन्होंने कमबैक मारा है पहली बॉल पे छक्का, और उसके बाद फिर इतनी कमाल की बॉलिंग, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस,
अच्छा, छक्के में
तो
आगे जो है आपने जिक्र नहीं किया, अब थोड़ा सा बैटिंग में भी जिक्र कर लेते हैं कि
बिल्कुल
मतलब पहले तो आज हो ना आपके जी शॉर्ट बॉलें, शॉर्ट बॉल हो रही है, पाकिस्तान की बैटिंग है, समझ नहीं आ रहा कि बाउंसर को कैसे खेलना है। ठीक है, मार्क वुड की तो चलो ठीक है, समझ आती है कि उसकी पेस बहुत ज्यादा है, आप उस पर स्ट्रगल करते हो तो चलो एक बंदे को समझ आती है। आपसे सैम करन के बाउंसर भी 125-30 लेने खेले जा रहे, भाई क्या स्टोरी चल रही है?
यार ये वही तो, ये देखे ना, अब ये सिचुएशन काफी खराब है हमारी पाकिस्तानी बैटिंग। अभी तो आप जलाल देखें, ये पाकिस्तान है, ठीक है, और पाकिस्तान में सामने सिर्फ आपके पास है मार्क वुड। ऑस्ट्रेलिया जब जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया की पिचेस कितनी फास्ट है, और वहां पे आपका जो बॉलर 145 148 प्लस जो कराएंगे उनको कैसे खेलेंगे यार ये लोग। तो अच्छा अब एक और चीज मुझे लगी यार, बाबर आजम ने शॉर्ट नो डाउट अच्छी खेल रहा था, सही है, थ्रू आउट द टूर्नामेंट आप देख रहे हैं, थ्रू आउट द सीरीज हम देख रहे हैं कि मतलब शॉर्ट उसकी सही जाती है, लेकिन जो शॉर्ट पिच बॉल है ना यहाँ पे वो काफी ज्यादा स्ट्रगल कर लेते हैं, तो ये
आई
काफी
थिंक
अलार्मिंग है।
बीटन फॉर पेस ही हुआ है। पहले मैच में भी जब मार्कवुड ने आउट किया था, कट मारा था बाबर ने, और वो बीटन फॉर पेस होके एज लग गया था, थर्ड मैन पे कैच हो गया। इसमें भी बाबर पूरी शॉट ही नहीं मार सका, मतलब क्रैम्प्ड फॉर रूम नहीं, जिस तरह कहते हैं कि एकदम से बस फंसी हुई, उसने पुल मारी है और वो आउट हो गया। तो ये थोड़ा सा कंसर्निंग तो है। ऑब्वियसली मुझे लगता है माइंडसेट का भी इशू है यार, ये डराया हुआ है मार्कवुड ने थोड़ा सा। ये आप देखो कि जो शॉटें मारी हैं हैदर ने, हैदर ने क्या पथेटिक किस्म की शॉट मारी है
बिल्कुल
यार, ना कोई फुट मूवमेंट ना कुछ, बस खड़े खड़े आप पुल मार रहे हो। तो मुझे लगता है कि उसका एक ना बैक एंड पे मार्कवुड ने ये चीज डाल दी है कि इस बॉल पे आया बाउंसर, और वो बाउंसर भी यूटिलाइज बड़ा अच्छा कर रहा है। देखो एक ही आप प्रॉपर बाउंसर करा सकते हो, लेकिन उसने गेस वर्क किया हुआ है, आपको नहीं पता ओवर में किस बॉल पे बाउंसर आ रहा है, और पाकिस्तानी
बिल्कुल
बैट्समैन
ये
को समझ नहीं आ रही।
बिल्कुल ये जो आपने अभी बात की मुझे बिल्कुल आसिफ अली की विकेट याद आ गई, कि
हाँ हाँ हाँ
जिस तरह मार्कवुड ने ली, कि जो आसिफ अली थे वो सोच रहे थे कि भाई मेरे पास शॉर्ट पिच बॉल आएगी, वो विकेट से बिल्कुल साइड पे हो गए, तो फिर एकदम उन्होंने वो चेंज ऑफ किया, वेरिएशन किया, फुल टॉस मारी और देखें आउट हो गए,
अच्छा
स्ट्रोक करे
अब
थे उस पे वो।
ये पोजीशन ऑफ आसिफ अली पे हमने पहले भी डिस्कशन की है, मुझे ये बताओ कि आप लास्ट टाइम आप ये कह रहे थे आसिफ अली को वन डाउन भी हम भेज सकते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द मैच सिचुएशन। अब कल टेलर मेड सिचुएशन थी सारे बैटर्स के लिए, ठीक है, सारे बैटर्स के लिए, कि भाई हम लोग ये बात करते रहे कि बाबर और रिजवान बहुत लंबा खेल जाते हैं तो किसी और प्लेयर को मौका नहीं मिल रहा पूरा। कल हर बैट्समैन के पास पूरा मौका था, शान भी नहीं परफॉर्म कर पाया, आपका हैदर भी नहीं परफॉर्म कर पाया, और जिस तरीके से आसिफ अली ने बैटिंग की है तो मुझे तो अब नहीं लग रहा कि ये ऊपर के नंबरों पे उस तरीके से प्रॉपर खेल सकता है। क्या आपको क्या टेक अवे है?
यार मेरा इस पे ये टेक अवे, जिस तरह वही हम लोग जो लास्ट टाइम भी बात कर रहे थे कि अगर शुरू में विकेट गिर जाती है तो मेरे ख्याल में आसिफ अली को शुरू में नहीं भेजना चाहिए, बाद में रखे। लेट्स सपोज अगर लेट्स सपोज के अगर वो 12-13 ओवर निकाल देते हैं आपका बाबर और रिजवान, 12-13 तो नहीं खैर 10 ओवर 11 ओवर, तो फिर आसिफ को भेजना चाहिए।
लेकिन
मेरा
कल
मतलब
उसी
यही
तरह
टेक है
भेजा है ना
मैं, हाँ उस
पिछले
हाँ
मैच
अभी
में,
बिल्कुल
लेकिन वो
हाँ
खेला उस
हाँ
तरह है जिस तरह आखिरी 6 गेंदे मैच की, कि भाई मैं मारना ही है हर गेंद पे। तो वो इनिंग्स बिल्डिंग
यार
वाला सीन है, जैसे आप देखते हो ना हार्दिक पांड्या, वो भी हिटर है, हार्दिक पांड्या जब शुरू में आता है वो गेंदे स्टॉप करता है, थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस होता है कि ये बंदा अपनी विकेट गिव अवे नहीं करेगा। आसिफ पे वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि ये इनिंग्स को बिल्ड कर सकता है, वो मेरा एक कंसर्न है कि उसको
हाँ
ऊपर
नहीं, वो
भेजना।
कंसर्न आपका बिल्कुल ठीक है, मैं मतलब उस बात पे एग्री करता हूँ, लेकिन मेरा इसमें एक बात ये है कि जैसे देखिए आसिफ की वो है विकेट के मतलब अगर ये गिर भी जाए ना तो मतलब इतना लॉस उस तरह नहीं हो सकता। लेट्स सपोज क्योंकि अगर हम इस तरह बात करें जो पिछला मैच था कि आसिफ अली या लेट्स सपोज अगर पहले आता, अगर 2-3 छक्के मार देता उसके बाद आउट हो जाता तो खैर थी, पीछे शान मसूद था, तो मेरे ख्याल में आसिफ अली एज अ वो है आपका, जैसे यार वो शाहिद अफरीदी का, हम नहीं कहते कि यार आ जाए छक्के छक्के मार दे उसके बाद फिर भी नीचे बैट्समैन है जो कि इनिंग को लेके चले,
अच्छा अब इसमें
आप
ये
पॉइंट
आपने
समझ
बड़ी
रहे हैं।
प्यारी बात की, कल के पिछले मैच में, अब कल तो होगी परसों ही बेसिकली हो गया, पिछले मैच में प्रॉब्लम ये हो रही थी मुझे जो लगता है आसिफ अली को, जहाँ पे मेरे हिसाब से वहाँ पे शादाब को भेजना चाहिए था, क्योंकि जो आप बात करो ना उस हिसाब से आसिफ अली तब आता है जब आपकी 1 या 2 विकेटें गिरी हो 11 ओवर तक, ठीक है, तब आपके पास पीछे बैट्समैन भी पड़े हुए हैं और आप कहते हो कि यार ठीक है अब आसिफ अली खुल के खेले। पिछले मैच में मसला ये हुआ आपकी 4 विकेटें गिर चुकी हुई थी,
हाँ
अब
बिल्कुल
उधर
बिल्कुल
आसिफ
बिल्कुल
अली आके, आसिफ अली की विकेट भी कीमती हो गई थी, वहां पर ये नहीं था कि आसिफ अली आए जाए तो कोई मसला नहीं है। तो ये थोड़ी सी जो है ना, अबू बकर साहब भी यही कह रहे हैं कि आसिफ अली बस कभी जल्दबाजी कर जाता है, सर वो हर दफा ही जल्दबाजी कर जाते हैं, आप श्रीलंका वाले मैच में भी देखें तो हसरंगा का ओवर अगर निकाल जाते दोनों मैच में तो क्या जा रहा था, तो वो
सही बात
जल्दबाजी तो वो कर ही रहे हैं, थोड़ा सा उनको ध्यान करना पड़ेगा। अच्छा
बिल्कुल
शान भाई का मुझे बताओ कि उस टाइम के ऊपर वो शॉट मारने की कोई सेंस, उस तरह लॉजिक समझ नहीं आई कि आप, ऐसा तो नहीं था कि
बिल्कुल
आपसे
लॉजिक
बिल्कुल रन ही नहीं बन रहे, आप वो शॉट तब मारते हो
बिल्कुल
जब आपसे कोई रन ही ना बने और बॉलर यॉर्कर पे यॉर्कर करा रहा है, तो क्या कहते हो?
बिल्कुल ऐसा ही है यार, आप सही कह रहे हैं, वही बात है कि शान मसूद की वो शॉट बनती ही नहीं थी, रिवर्स मार है तो वो मतलब मतलब के पिच में उस वो जो बॉल उससे सही जज ही नहीं हुई, तो मेरे ख्याल में फ्रंट फुट पे सही खेल रहा है, सही शॉटें मार रहा था, वहीं पे रहता, ज्यादा ट्राई ना करता उस तरह।
हाँ नहीं,
और
लैप
मेरे
मारने की
ख्याल
तो जरूरत नहीं
में
थी।
हाँ, जिस तरह वही बात है कि फर्स्ट मैच पे भी, बाकी सारे मैचेस पे भी जो मैं देख रहा हूँ, शान मसूद मुझे इतना कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा कि मतलब कि एक होता है ना कि शायद शायद ये अपना कमबैक मार रहा है काफी अरसे बाद, या कोई कोई और प्रेशर है। मुझे नहीं लग रहा कि अपना 100% देख रहा है, ये अपना 100% यहाँ पे दे रहा है। जिस तरह हम इसकी काउंटी मैचेस देखते हैं, वहां पे इसका थोड़ा स्टाइल ना एग्रेसिव, मतलब कॉन्फिडेंट इसकी शक्ल से नजर आ रहा होता है,
देखो,
तो
अबू
ये
बकर
चीज
साहब
मुझे
भी ये
थोड़ा सा
कह रहे
लैक नजर
हैं
आया।
कि शान शान उल्टे शॉट्स खेल रहा है उसको। भाई
ये
पाकिस्तानियों को समझाओ ये शॉट्स नहीं खेला जाता हमसे।
सही
वैसे शान
बात
ना ये वाली शॉट बड़ी अच्छी खेलता है, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से देखना चाहिए ना कि क्या उस टाइम के ऊपर वो शॉट बनती थी या नहीं बनती थी। उस टाइम के ऊपर बाबर की विकेट गिरी है, आप थोड़ा सा चलाते। अच्छा, हम ये अब ये नहीं कह रहे कि कभी कभी हम ये भी कहते हैं कि आप पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो। अब एक चीज डिफ्रेंशिएट करने वाली है, कराची की पिच का एवरेज स्कोर है 190 से ऊपर, लाहौर की पिच का एवरेज स्कोर है 160, 160s में, ठीक है। तो यहाँ की पिच वो फ्री फ्लोइंग पिच नहीं है कि आप एक्सपेक्ट करो कि यहाँ पे 190 200 रन बन जाएंगे बड़े आसानी से। तो यहाँ पर शायद 160 से 70 का टारगेट बड़ा ठीक
सही
ठाक टारगेट है,
समझा जा
और
रहा
पाकिस्तान ऑन ट्रैक था, एंड तक ऑन ट्रैक था। देखो, हमने आखिरी एक ओवर मिस किया ना, रिजवान की बैटिंग बड़ी एक्सेप्शनल लगी, इसलिए कि वो फ्लो में भी खेलता रहा, स्ट्राइक रेट भी ठीक था, पिच हालांकि डिफिकल्ट थी, कोई साथ ही नहीं दिया उसका किसी बैट्समैन ने। तो बड़ी डिसअपॉइंटिंग मिडल ऑर्डर फिर रहा है हमारा।
हाँ। बल्कि यार जलाल, इस दफा तो अगर हम देखें हमारी लाइनअप जो थी, लाइनअप पे देखे हमारे पास मोहम्मद वसीम तक का
हाँ
के जो देखे ना, मोहम्मद वसीम तक हमारे पास चांस था कि यार हमारे बैट्समैन कुछ ना कुछ कर जाए, और देखे 18.6 बॉल्स पे हम सारे आउट हो गए। तो ये भी काफी अलार्मिंग है कि जो मिडल ऑर्डर है वो इस तरह खेल नहीं रहा,
बिल्कुल, दस
हालांकि
तो
चांस मिला
बैट्समैन
है
थे
काफी।
आपके। इवन
सही
हारिस भी
बात,
कोई मामूली नहीं, हारिस भी छक्के छक्के मार देता है।
बिल्कुल
तो उस लिहाज से देखा जाए ऑल आउट हो रहे हैं हम। हमने एशिया कप में भी देखा है कि हम ऑल आउट हो रहे हैं, हालांकि पाकिस्तान की जो डेप्थ है उस हिसाब से होना नहीं चाहिए। देखो नवाज ने और शादाब ने कितने कैजुअल रनआउट्स किए हैं, तो
सही
मतलब
बात,
बड़ा डिसअपॉइंटिंग था यार, वो बड़ा डिसअपॉइंटिंग था।
बिल्कुल काफी ज्यादा अजीब सीन था। और यार अब एक और बात हो रही थी, जिस तरह मोहम्मद हारिस की बात कर रहे थे ना हमने जो भी बात की, तो मोहम्मद हारिस अगर खेलता है टीम में, तो लेट्स सपोज अगर ये अभी जो मैच होता है अगला हमारा ना, उसमें अगर रिजवान नहीं खेलता, ठीक है, तो आप मोहम्मद हारिस को किस पोजीशन पे देख रहे हैं? फेसर
ओपनिंग
देख रहे हैं या ओपनिंग देख रहे
बिल्कुल
हैं?
ओपनिंग।
हाँ, नेशनल T20 में उधर ही खेला है तो
हाँ,
वही
ये
बनता है
मोहम्मद
वैसे।
अबू बकर साहब कह रहे हैं कि मैंने प्रैक्टिस सेशन में भी देखा शान को बहुत ज्यादा रिवर्स स्वीप ट्राई कर रहा था, और प्रैक्टिस में भी शॉट्स नहीं लग रही थी, और एक मैच में रिवर्स स्वीप ट्राई किया लेकिन पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला। बिल्कुल, मैंने भी वो क्लिप देखी है, लेकिन वो स्पिनर्स को रिवर्स स्वीप कर रहे थे ना यहाँ पर, तो मेरे हाल हमारे वो मुंह से गलत निकल गया, वो रिवर्स स्वीप नहीं कर रहे थे, वो लैप कर रहे थे, ठीक है, पीछे की तरफ, और विली को कर रहे थे पेसर के अगेंस्ट। वो वाली शॉट वो अच्छी खेलते हैं, क्योंकि मैंने उनको इंग्लैंड में भी देखा है ये वाली शॉट्स खेलते हुए, लेकिन वो शायद सिचुएशन के हिसाब से वो शॉट ठीक नहीं थी। और शान और हैदर से उम्मीदें बहुत हैं, और लोग देखो पाकिस्तान क्रिकेट की ब्यूटी देखो, पहले फखर खेल रहा था, लोग कह रहे थे फखर को बाहर करो हैदर को लाओ, अब हैदर है तो लोग कह रहे हैं हैदर को बाहर करो फखर को वापस लाओ। मतलब है यार, अजीब ही सीन चल रहा है।
यार मुझे तो लगता है फखर आ जाएगा वापस। अगर मैं बात करूं, हालांकि मैं भी बड़ा उसके बारे में बोलता था, बोलता खैर अभी भी उस, अगर खैर वो दूसरा पर्सपेक्टिव है, लेकिन अगर हम ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से देखें तो हैदर अली परफॉर्म नहीं करा सही है, खुशदिल आपके पास उस तरह है नहीं फॉर्म में, तो फखर जमान का भी थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया होगा थोड़ा इन्हीं बातों की वजह से, तो हो सकता है खेल जाए।
हाँ नहीं, अच्छा, ये अबू बकर साहब ही कह रहे हैं कि एक्चुअली आजकल हम 10 विकेट्स दे रहे हैं, पाकिस्तान का ही फायदा है, 50K मिल रहा है पाकिस्तानियों का। अच्छा, ये शायद वो
वो
KFC वाला वो जो
KFC वाली बकेट वाला,
डोनेशन में मिल
बिल्कुल
रहा है, ये बात भी ठीक है, शायद ज्यादा हम
बिल्कुल
दयालु हो
नहीं
गए
यार,
हैं।
ये वैसे काफी नहीं यार, यहाँ पे काफी ज्यादा क्रेडिट जाता है, मतलब देखे फ्लड विक्टिम्स के लिए काफी काम हो रहा है, लेकिन इसकी अगर एक और जगह देखे तो बैंक अल्फला भी दे रहे हैं $1,000, अगर छक्के मार दे तो फिर उससे भी गेम बदल जाए थोड़ी, क्या कहते हैं अबू बकर साहब?
छक्के पे तो बहुत ज्यादा पैसे मिल रहे हैं भाई, मतलब
वही ना।
विकेटों पे तो सिर्फ 50,000 रुपये ही मिल रहे हैं, तो छक्के पे तो तकरीबन कितने 2 लाख से ऊपर पैसे मिल रहे हैं। अच्छा ये एक पिछले मैच की मेरे हाल बात कर रहे हैं जिसमें शानवर सुंदरीबर स्वीप पे आउट हुए थे। ठीक है भाई, हाँ मुझे समझ आ गई आप जो कह रहे हो। मैंने भी वो क्लिप देखा है, शान बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे रिवर्स स्वीप करने की, और वो उस प्रैक्टिस में भी मैंने देखा था काफ़ी उनसे रिवर्स स्वीपें मिस हो रही थी। मोहम्मद यूसुफ भी साथ उनको समझा रहे थे कुछ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ ज़्यादा। अच्छा एक चीज़ देखो, हमने रिजवान की बैटिंग पे भी बड़ा क्रिटिसाइज करते रहे हैं कि जी जिस अंदाज में वो खेलता है, एशिया कप का फाइनल ले लो या पीछे भी एक मैच इस सीरीज में ले लो जहाँ पे आई थिंक 80 समथिंग रन बनाए थे उसने और काफ़ी ज़्यादा बॉल्स खेल गया था, लेकिन पिछले मैच में रिजवान ने आउटस्टैंडिंग खेला है। क्या कहते हो उसका, जो आपको एक फ्लो नजर आया वो अच्छा था?
यार काफी अच्छा फ्लो था। मेरे ख्याल में रिजवान मुझे लगता है फुली कॉन्फिडेंट बंदा है, मतलब कि वो हर इनिंग ही ऐसे खेलता है, मतलब उसका स्ट्राइक रेट ऐसे ही होता है, मतलब कि उसको चुर्त नहीं है कि यार अगली विकेटें गिर रही हैं, मैंने उस तरह करना है या स्कोर उस तरह है, मतलब कि वो अपनी गेम खेलता है फुली कॉन्फिडेंट आके, तो अच्छा भी है। लेकिन वही बात है कि अगर अगर आपके विकेट्स हो तो फिर आप थोड़ी स्ट्राइक लें, थोड़ा एग्रेसिव होके खेलें। जिस तरह लास्ट मैच में हम बात कर रहे थे कि रिजवान को चाहिए था कि थोड़ा एग्रेसिव खेलता, तो आज
हाँ
के जो भी मैच हुए उस पे वो वाली टेक्निक वर्कआउट कर गई।
नहीं
अब देखते
उस,
हैं कि
क्योंकि
आगे वाले मैचेस में करती है
वो
या नहीं।
पिच के हिसाब से खेल रहा था, और
हाँ
इवन दो पिच मुश्किल थी लेकिन स्ट्राइक रेट ठीक था उसका मैच के हिसाब से। अगर शायद उसके साथ कोई और बैटर खड़ा होता तो वो और बेहतर चांस ले सकता था। वो डर भी रहा था ना कि यार अगर मैं यहाँ पे आउट हो जाता हूँ फिर गए, तो ये अब मिडिल ऑर्डर को थोड़ा कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा। हम बाबर रिजवान पे काफी बोलते रहते हैं स्ट्राइक रेट पे, और हमने ये भी बात की है कि शायद मिडिल ऑर्डर पे प्रॉब्लम नहीं है, मिडिल ऑर्डर की बैटिंग ऑर्डर में प्रॉब्लम है। लेकिन पिछले मैच में मतलब सबको चांस मिला था कि यार आप अपना इवन नवाज को ले लो, शादाब को ले लो, किसी को भी ले लो, मोहम्मद वसीम जूनियर को भी ले लो, या आमिर जमाल, चलो डेब्यू है उसका उस पर उस तरह नहीं कह सकते, लेकिन वो भी शॉर्ट बॉल पे आउट हुआ। किसी ने ओनरशिप नहीं ली और ये हम आराम से 160 तो इजी बनता था यार। पता नहीं क्या हम कर रहे थे एज अ बैटिंग यूनिट। इंग्लैंड की भी समझ नहीं आ रही भाई। अब हमने
सही
इंग्लैंड के
कहा, मैं भी ये कहने वाला था यार। अच्छा इंग्लैंड की भी आप देखें, मजे की बात उस उन्होंने भी स्लॉग्स मारे हैं मैक्सिमम। आप स्टार्ट के अगर फिल सॉल्ट का देखें, मरान का देखें, ये प्रॉपर उस तरह शॉट ही नहीं मारी इन्होंने, मतलब कि आप जो इंग्लैंड के बैट्समैन से एक्सपेक्ट करते हैं ना, वो वाला सीन मुझे नजर नहीं आया। क्या ख्याल है?
नहीं, ऐसा ही है। देखो यार हमने बड़ा पिछले जो बहरहाल पहले 2-3 मैच थे उसमें हमने काफ़ी इंग्लैंड की बैटिंग की तारीफ की थी कि ये उस मॉडर्न टेम्पलेट के साथ खेल रहे हैं कि भाई विकेट गिरती भी है तो हमने मारना है। सही है। हाँ अब देखो इस मैच में आपको क्रूशल जो चीज़ एक लगी है ना वो ये है कि बेन डकेट आपका जल्दी आउट हो गया। ठीक है, बेन डकेट वो प्लेयर है जो हर मैच में जिसने रन्स किए हैं इस सीरीज में पिछले मैच से पहले, और वो कहीं ना कहीं टेम्पो लूज नहीं होने दे रहा था। मेरा ख्याल है वो इंग्लैंड को बहुत बड़ा ब्लो हुआ कि बेन डकेट जल्दी आउट हुआ, और उसको आउट कराने में भी डेविड मलान का बड़ा किरदार था। मलान से शॉटें नहीं लग रही थी और वो उसने फ्रस्ट्रेशन में आके बेन डकेट ने वो शॉट मार दी। लेकिन मेरा ख्याल है ये पिच मैर उस तरह की थी नहीं कि आप इस पे फ्री फ्लोइंग
हाँ
इंग्लैंड टेम्पलेट से खेल सको।
यार वही बात है, ये आपने बड़ा अच्छा रेज किया पॉइंट कि देखिए इंग्लैंड का जो माइंड सेट है बेसबॉल नैरेटिव की, जो हम बात करते हैं कि मारो आओ मारो आओ मारो, अब देखा जाए जो ये पिछला मैच भी हारे हैं वो भी इसी वजह से हारे हैं। अगर ये लोग थोड़ा स्लो स्लो खेलते, मतलब आराम से खेलते तो हो सकता था वो स्कोर। तो मेरे ख्याल में बेसबॉल नैरेटिव इनको चाहिए पिचेस के हिसाब से करें, और जिस तरह अगर जिस तरह लाहौर की पिच हमने देखी आज की जो हुआ है कल मैच, तो उसमें थोड़ा आराम से खेले स्लो स्लो, तो वो भी चीज इनकी वर्कआउट कर सकती है।
बस देखो ना, अब ये ट्रिकी मामला हो गया। मामला ट्रिकी ये हो गया है कि भाई क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है प्लेयर्स पे, हम भी अपने प्लेयर्स को कहते हैं आप पॉजिटिव खेलो, पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ एक सोचनी पड़ेगी कि पॉजिटिव माइंडसेट का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि हमने छक्के मारने, उसमें आपकी रोटेशन ऑफ स्ट्राइक, उसमें आपकी बॉल लीव करने की इंटेंट भी, वो भी एक पॉजिटिव
बिल्कुल
तरीके से अगर की जाए तो वो भी पॉजिटिव माइंडसेट ही होता है। लेकिन आपको
बिल्कुल
पिच को तो अकाउंट फॉर करना पड़ेगा ना यार, पिच को तो आप नलेफाई नहीं कर सकते। और मुझे तो समझ नहीं आ रही उमेश साहब, मुझे अभी भी हजम ये नहीं हो रहा कि इंग्लैंड की बैटिंग बिल्कुल इतने अच्छे इनके प्लेयर्स हैं और वो सिचुएशन के हिसाब से बिल्कुल नहीं खेल रहे, और जो पाकिस्तान ने बॉलिंग कर दी है ना उमेश साहब, ये नथिंग शॉर्ट ऑफ एक्सेप्शनल है यार। गीली बॉल 145 का टारगेट, बहुत बड़ी बात है,
बिल्कुल
बहुत बड़ी बात है।
यार, बहुत बड़ी बात है। और अच्छी बात ये है कि इनके कि यहाँ पे पाकिस्तान की बॉलिंग की हर कोई तारीफ कर रहा है। मैं इंडियन काफी यूट्यूबर्स हैं उनकी वीडियोस देख रहा था, उन्होंने भी कहा यार ये पाकिस्तान कहाँ से ऐसे बॉलर्स ला रहा है कि डेब्यू में इतनी अच्छी बॉल करा रहे हैं, वो भी मोइन अली को। तो
हाँ
मेरे ख्याल में यहाँ पे क्रेडिट जाता है, जिस तरह आपने पहले बात की मोहम्मद वसीम को के उसने कॉन्फिडेंस शो किया इस पे। और पाकिस्तान की बॉलिंग तो यार खैर एक तो हमारी लेगेसी भी है थोड़ी, कि शुरू से हम देखते हैं कि बॉलर्स वगैरह काफी काफी अच्छे आए, काफी अच्छे प्रोड्यूस किए पाकिस्तान ने, तो ये प्लस पॉइंट है काफी। पहले भी ऐसे ही होता था कि मुझे याद है 50 ओवर्स की गेम होती थी, हम कहते थे यार बस 200 टच कर ले पाकिस्तान, फिर आगे वसीम जाने, वकार जाने, शकलैन जाने। तो
हाँ
अभी भी ऐसे ही हो रहा है,
नहीं
वही
नहीं
वाला
बिल्कुल
नैरेटिव
ऐसा
मेरे
है।
ख्याल में वापस आ जाएगा। बिल्कुल
अभी अबू बकर साहब के कमेंट्स पे हम आते हैं। एक जो चीज़ मैं बस पॉइंट आउट ये करना चाह रहा था कि मोइन अली की कप्तानी, देखो बॉलिंग की हद तक तो ठीक है, आपको समझ आती है, उसके चेंजेस ठीक थे। मार्क वुड को बड़ा अच्छा उसने यूटिलाइज किया, राइट टाइम पे जब विकेट चाहिए थी वो मार्क वुड को लेके आता था, सही है, वो तो समझ आ रही थी। बैटिंग में ये नहीं समझ आई उमेर साहब कि जब इफ्तखार बॉलिंग करा रहे थे तो खब्बा आउट हुआ, डेविड मलान, खब्बा ही भेज दिया आगे से, ठीक है, यानी मेरे हाले खुद ही आ गए, और वो खब्बे पे
मिले आ गए।
खब्बे पे वो बॉल करते जा रहे थे इफ्तखार। वहां पर क्या केस नहीं था कि आप क्रिस वोक्स को ऊपर भेज देते, इवन दो काफी अरसे बाद खेल रहे हैं, लेकिन राइटी राइटी अगर हो जाते तो काफी बेहतर हो सकता था, क्या कहते
काफी
हो?
बिल्कुल हाँ, नहीं सही बात है, ये बड़ा अच्छा एनालिसिस है। और लेकिन मेरे ख्याल में ना वो मोइन, जिस तरह हमने देखा इंग्लैंड वगैरह काफी स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, तो शायद उनको यही वाला कॉन्फिडेंस जो कि उनको इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए था, इन्होंने वही वाले कॉन्फिडेंस पे रह के यार नहीं यार हम स्पिनर्स को अच्छा खेल देंगे, सही कर लेंगे, तो मेरे
अच्छा,
ख्याल में ये
एक
होगी
इसमें
बात
एक
उनके
ये
माइंड
पॉइंट
में।
भी है, शायद वो ये भी सोच रहा हो कि यार मोहम्मद नवाज के भी 2 ओवर असल में पड़े थे, तो उसने ये बोला होगा राइटी भेज देंगे तो वो नवाज लगा देंगे। तो ये बड़ा फायदा हो रहा है वैसे इफ्तिखार की, मल्टी
हाँ
डायमेंशनल जो
बिल्कुल
चीजें हैं ना, ऑफ स्पिन का फायदा हो रहा है भाई,
बिल्कुल
हमें बैलेंस हो
हाँ
रहा है।
जी बिल्कुल फायदा हो रहा है। अब जलाल यहाँ पे एक और बात है, जिस तरह अभी वीडियो के स्टार्ट में हम बात कर रहे थे कि भाई पाकिस्तान के पास चार होने चाहिए सीमर्स और तीन स्पिनर होने चाहिए। चले तीन स्पिनर तो हमारे हो गए फाइनल, ठीक है, इफ्तिखार पे भी कॉन्फिडेंस आ गया, बाबर को नवाज भी है, ठीक है, और शादाब का बहुत अच्छा कमबैक है और बड़ा मतलब 100% है शादाब का तो हमारे लिए। और लेकिन सीमर्स की जब हम बात करें तो अब वहां पे आमिर जमाल भी कंपेटिटर आ गए, सही है। तो आप क्या देखते हैं कि चार सीमर हमारे पास कौन होने चाहिए टीम में? तीन तो हमारे जो तीन है वो तो मेन होने चाहिए मेरे ख्याल में, एक हमारा थोड़ा जो होता है वो मिक्स होना चाहिए, क्या कहते हैं?
या वर्ल्ड कप की एस्पेक्ट में बात कर रहे हो ना?
हाँ हाँ वर्ल्ड कप के एस्पेक्ट से बात करें।
हाँ, मैं उस पे आता हूँ। रबी साहब सलाम कह रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम।
वालेकुम अस्सलाम,
अबू
वालेकुम
बकर साहब भी
अस्सलाम।
वालेकुम अस्सलाम कह रहे हैं रबी साहब को, तो चले ये अच्छा हो गया ना, देखो सलाम दुआ चैट में भी हमारी शुरू हो गई।
हाँ
अच्छा,
नहीं
बॉलर्स की
अच्छी
जो आप
बात
बात
है।
कर रहे थे ना यार, मुझे ना वो ऑस्ट्रेलियन मॉडल बड़ा पसंद आ रहा है, इसी वजह से मैं आमिर जमाल के बड़े हक में था लास्ट जब आपसे डिस्कशन हो रही थी, कि
बिल्कुल
बैलेंस बहुत ज्यादा हो रहा है। अब देखो ऑस्ट्रेलिया की टीम में क्या हो रहा है कि तीन आउट एंड आउट पेसर हैं, पैट कमिंस हो गया, मिचेल स्टार्क हो गया और हेजलवुड हो गया, तीनों क्वालिटी पेसर हैं। तो अभी नसीम क्यों, खैर वो कोविड शोविड हो गया, अल्लाह उसको जल्दी रिकवर करवाए, लेकिन आइडियल सिनारियो में अगर शाहीन फिट हो जाता है और नसीम अवेलेबल होता है तो हारिस, नसीम और शाहीन, ये तो आपके तीन पेसर हैं, ठीक
तीन
है,
तो हो गए
ये
पेसर,
उसी तरह
ठीक
हो
है
गए जिस तरह जॉस हेजलवुड इंडिया सॉरी ऑस्ट्रेलिया के पेसर्स हो गए।
बिल्कुल मैं समझ गया
अब
बिल्कुल।
ऑस्ट्रेलिया के पास दो ऑप्शन आ जाती हैं, मार्कस स्टोइनिस और मिचेल मार्श की सूरत में, ठीक है, जो उनकी प्लेइंग इलेवन में खेल रहे होते हैं, वो अगे दो मीडियम पेसर्स, मिचेल मार्श की थोड़ी सी पेस ज्यादा है। अब उनके पास एक और ऑप्शन आ गई कैमरून ग्रीन की शक्ल में, अब वो खिलाते नहीं खिलाते एक अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं 5 से 6 पेस बॉलिंग ऑप्शन है उनके पास टीम के अंदर, फिर जैम्पा है और मैक्सवेल की ऑफ स्पिन है, तो बहुत ज्यादा उनको एक मार्जिन मिल रहा है
एज है,
कैप्टन
मार्जिन
एज को।
मिल रहा
पाकिस्तान भी
है।
अगर मुझे लगता है कि खुशदिल की जगह या जिस तरह आज हैदर खेला है वहां पे हम, क्योंकि हैदर की परफॉर्मेंस नहीं आ रही, मैं ये कह रहा हूं अगर हम चांस ले लें आमिर जमाल को फॉर एग्जांपल हम खिलाते हैं और हम वसीम को इसी तरह रखते हैं, चार पेसेस के साथ हम जा सकते हैं अगर फॉर एग्जाम्पल नसीम वगैरह फिट नहीं होते। अगर नसीम वगैरह फिट हो जाते हैं तो हम ये कर सकते हैं कि नसीम, शाहीन, हारिस के साथ एक ऑलराउंडर हो जाए, बीड नवाज, बीड आमिर जमाल, ठीक है, तो चौथा एक पेसर
अच्छा
हमारे पास होना चाहिए, उसके लिए
नहीं
मुझे
नहीं
लग
मैं आपका जी जी मैं आपका पॉइंट ही समझा, मतलब आप कह रहे हैं कि नसीम होना चाहिए, हारिस और शाहीन, ये तो होंगे हमारे तीन
हाँ
मेनस्ट्रीम है ना।
इनके
उसके बाद आप
साथ,
कह रहे हैं मोहम्मद वसीम,
इनके साथ एक पेस बॉलिंग ऑलराउंडर होना चाहिए, आइदर आमिर या वसीम, जो भी आपको बेहतर लगता है
हाँ बिल्कुल
बैटिंग बॉलिंग में,
बिल्कुल
मतलब मैच हो रहा है ना। आइडियल सिनेरियो तो ये हो कि ये दोनों भी खेल जाएं किसी तरीके से, लेकिन हमें इनकी बैटिंग पे उतना भरोसा नहीं है।
बिल्कुल नहीं। अच्छा ये आपने बात से थोड़ी मतलब अच्छी की है काफी, कि जो आमिर जमाल की आप बात करें इस पे मैं ये, अगर अगर हम लोग वो देखें जो कि अभी जो टूर्नामेंट हुआ है नेशनल T20, वहां पे आमिर जमाल ने बड़ी एक अच्छी इनिंग खेली थी। आई थिंक 41 मारा था 17-18 बॉलों पे।
हाँ
तो
हाँ हाँ
अगर
नहीं,
नेट
नॉर्दर्न की
सपोज
तरफ।
आमिर जमाल, हाँ, अगर आमिर जमाल अभी खेल जाता है अगले 2-3 मैचेस में कुछ इस तरह की इनिंग खेल जाता है, तो फिर मेरे ख्याल में ये सिनेरियो बन सकता है कि 5 बंदों के साथ चले जाए। नहीं तो मेरा नहीं ख्याल कि बाबर इतना कॉन्फिडेंट
यार
होगा
देखो,
इस
असल
बार।
में जो बॉलिंग तो वो बहुत अच्छी करा गया ना, लेकिन उसके पास बैटिंग में भी अपॉर्चुनिटी थी। अभी ये इतनी टफ फेज आया हुआ है कि अगर मैं इस जैसे विश कर रहा था कि कल आमिर जमाल, परसों आमिर जमाल कर परफॉर्मेंस दे देता, ठीक है बैटिंग से भी, तो बहुत पक्का उसका केस हो जाता।
पक्का से
अब आपको नहीं पता
पक्का
कि
से।
अगले मैचेस में उसको बैटिंग में
लेकिन
उस तरह की
जलाल,
बॉल्स मिलेंगी, नंबर ऑफ
हाँ
बॉल्स या नहीं मिलेंगी।
लेकिन जलाल मेरा क्वेश्चन है यार, देखिए पाकिस्तान का इशू तो बैटिंग का है, हमने बॉलर्स का देखा यार, बॉलर्स तो कमाल कर रहे हैं हर मैच में, इशू आता है बैटिंग पे। तो आप नहीं समझते कि यहाँ पे जो जो पाकिस्तान जो PCB की मैनेजमेंट है वो ज्यादा फोकस करेगी बैट्समैन पे, कि यार कोई बैट्समैन आ जाए जो हमें यहाँ पे ना थोड़ा सहारा दे दे, थोड़ा सा मतलब के स्ट्राइक पकड़ ले, क्या
यार देखो,
कहते हैं?
दोनों चीज़ें हैं। मुझे अब जैसा शाहिद अफरीदी से भी ये सवाल हुआ था, शाहिद अफरीदी ने भी कहा था कि हमारी टीम में ना हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर मिसिंग है, ठीक है, जो हमें पेस वाले ओवर्स भी दे दे, और बैटिंग में जैसा रजाक थे या पहले अजहर महमूद थे, ठीक है, वो हमारे पास वो आ नहीं रहा, और हम काफ़ी सालों से तलाश कर रहे हैं। उससे क्या होता है, आपका बैलेंस बहुत अच्छा हो जाता है, जिससे हार्दिक पांड्या आपके फोर्थ सीमर है। मुझे ये कहीं ना कहीं लगता है कि जिस नंबर पे खुशदिल आते थे, उस नंबर पे आप ऑलराउंडर ही खिलाते हो पूरी दुनिया में। मतलब खुशदिल आते थे आखिरी 3 ओवर में, आप आखिरी 3 ओवरों में आसिफ और खुशदिल को एज अ प्योर बैटर खिला ही नहीं सकते, आपको वहां पे ऑलराउंडर्स खिलाने हैं, ठीक है। आसिफ अली पहले ही एक आपके जगह ले गया, वो बॉलिंग करते नहीं है, तो आपको एक ऑलराउंडर चाहिए। अच्छा एक इधर कमेंट मारा है अबू बकर साहब ने, क्रिस ग्रीन, नहीं ये क्रिस ग्रीन की बात नहीं कर रहे जी, कैमरून ग्रीन की बात कर रहे हैं, जो
कैमरून ग्रीन की,
उनका
ये अबू
फास्ट बॉलिंग
बकर साहब
ऑलराउंडर है।
आप देखें उनका मैच देखें जो इंडिया के साथ हुआ है अभी T20 ना, उसमें उन्होंने कमाल की बैटिंग की है। एक मैच में तो 51 मारा है और आई थिंक 17 बॉल्स खेली थी उन्होंने, 18 बॉल्स खेली थी,
19 पे 50
नाइनटीन
कर दी
बॉल्स
थी।
हाँ 19 बॉल्स में उन्होंने 51 मारा है, तो बड़ी उम्दा इनिंग खेली है उन्होंने, मजा आया था हमें देखने का। याद है जलाल, हम देख रहे थे, हम सोच रहे थे यार ये क्या कर रहा
यार बिल्कुल, बॉल वन से उन्होंने भुवी को मारा है, भुवी की आउट स्विंग पे भी
है।
मारा है, भुवी की इन स्विंग पे तो जो लंबा छक्का मारा था वो तो कोई बड़ा ही जबरदस्त सीन हो गया था। अच्छा एक इधर कह रहे हैं अबू बकर साहब ने कोई टीम भेजी है, अब टीम आई थिंक पूरी डिस्प्ले होती है ये नहीं होती, लेट्स सी।
मैं बता देता हूँ मेरे पास में बाबर है, बाबर के बाद रिजवान है, रिजवान के बाद शान है, शान के बाद शादाब है, शादाब के बाद नवाज है, नवाज के बाद आसिफ है, आसिफ के बाद आमिर है, आमिर हाँ आसिफ के बाद आमिर है, उसके बाद फिर वसीम है, फिर शाहीन है, फिर नसीम है, फिर राउफ है।
अच्छा
ये
इसमें
टीम
क्या
तो
हो
जरा
गया,
मुझे आप वाली लग रही है, इन्होंने सेकंड डाउन ले आए शादाब को, और हाँ
यार नहीं मैं भी
ये
आइडियली ऐसी
इफ्तिखार को
टीम ही
भी छुपा
चाहता
रहे
हूं।
हैं।
टीम आपने बड़ी बम्बास्टिक किस्म की बनाई है, लेकिन
एक
इसमें
दो
मसला
तीन चार पांच स्पिनर हमारे पास दो अच्छा इसमें कोई
इसमें इन्होंने
वो
इफ्तिखार को नहीं
स्पिनर आ
डाला
रहे हैं,
ना।
इफ्तिखार नहीं है ना, तीसरी स्पिनर ऑप्शन नहीं है हमारे पास,
हाँ अब इसमें वही मसला आ रहा है कि
और
आपकी बैटिंग थोड़ी लाइट लग रही है, क्योंकि आपको आमिर और वसीम की ना बैटिंग पे इतना एतबार कोई नहीं है, तो
अरे
इधर
बिल्कुल
इस
बिल्कुल
वजह से ना वसीम और आमिर में से एक ही मेरा ख्याल है खेल
एक
सकता
आएगा
है, ठीक
एक
है,
आएगा,
और फिर
बिल्कुल
आप
ऐसा ही है,
इफ्तिखार को बीच में डालोगे ताकि आपको ऑफ स्पिन की ऑप्शन भी मिल जाए
बैलेंस भी मिला। हाँ
और बैटिंग में भी थोड़ा रिलायबिलिटी मिल जाए। अलग बात
बिल्कुल
है
यार ये टीम
रिलायबिलिटी आ नहीं रही उनकी तरफ
हाँ
से।
रे आपको याद है वर्ल्ड कप की टीम थी जो हम लोग बना रहे थे, पिछली से पिछली एपिसोड थी शायद, उसमें भी हम लोगों ने ऐसे ही रखे थे ना कि चार हमारे पेसर्स थे और
हाँ
तीन स्पिनर्स के साथ गए थे हम लोग,
नहीं, चार
तो
पेसर तो
देखते हैं। हाँ
मस्त हैं, जैसे वसीम और आमिर बड़े क्रूशल
बिल्कुल
हैं, और आमिर इसलिए भी अच्छा है कि देखो वसीम की इंजरी का मसला रहा है, पहले भी दो एक दो दफा इंजर्ड हो चुके हैं, तो आमिर क्रूशल इस सेंस में भी है। और देखो पिछले मैच में आमिर वसीम से ऊपर बैटिंग करने आया है, ठीक है? तो इसका मतलब ये कि टीम मैनेजमेंट को, उन्होंने उनकी बैटिंग देखी हुई है डोमेस्टिक मैच में, उनको लगता है कि वो एक बेहतर बैट्समैन है वसीम से, ठीक है? तो वो भी एक चीज है।
और मेरे ख्याल में सोच भी रही है कि अगर अगर लेट्स सपोज उसको ऊपर भेजा है तो शायद इसी वजह से भेजा हो कि यार देखते हैं कि ये खुशदिल वाली जगह पे सेट हो सकता है या उसे ऊपर वाली पोजीशन पे मतलब मार सकता है छोटे मोटे।
हाँ नहीं, ये अबू बकर साहब कह रहे हैं कि
ये अच्छी चीज। हाँ हाँ
ऑस्ट्रेलिया में तो स्पिनर्स को इतनी हेल्प नहीं मिलेगी, मेरा ख्याल है ये इफ्तिखार के सेंस में कह रहे हैं। देखो यार, बात सिर्फ उसकी नहीं है ना, बात बैटिंग की भी है कि आपको इफ्तिखार थोड़ी सी स्टेबिलिटी दे देता है, अब ऑन पेपर दे देता है, इन थ्योरी दे देता है, ठीक है? लेकिन ऑस्ट्रेलिया में अगर आप उनका रिकॉर्ड देखो बैटिंग का, तो वो अच्छा है। सिर्फ मेरा पॉइंट ये कहने का है कि जब आपका लेफ्टी आता है, जिस तरह हमने स्क्वीज किया, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया की टीम से ग्लेन मैक्सवेल आते हैं, वो वाला रोल इफ्तिखार बॉलिंग में अदा कर सकते हैं अगर नवाज या शदाब में से कोई स्ट्रगल करता है तो। ये है सिर्फ एक पॉइंट।
जी जी अच्छा जी, नीचे मोहम्मद जिशान का मैसेज है, ये हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, आप भी जानते हो कि जनाब
हाँ हाँ हाँ
जिशान
जीशान
आपके साथ थे। ये कह रहे हैं एनी चांस ऑफ शोएब मलिक कमिंग बैक टू टीम इंस्टेड ऑफ इफ्तिखार? यार यार शाणे, ऐसा मेरा नहीं ख्याल ऐसा हो सकता है, क्योंकि शोएब मलिक ने ऐसी ट्वीट कर दी थी तो वो वाली ट्वीट के बाद थोड़े से उनके इश्यूज हो गए। क्या ख्याल है आपके जनाब?
यार देख, अभी इफ्तिखार ने जो लास्ट दो मैचों में बॉलिंग कर दी है ना, तो अब तो इफ्तिखार
अब तो कोई भी नहीं बनता।
नहीं, अब जो है मसला हो गया ना, अगर तो इफ्तिखार बॉलिंग भी अच्छी ना करते, बैटिंग तो अभी तक नहीं अच्छी कर पा रहे, लेकिन बॉलिंग से एज दे दिया है, क्योंकि शोएब मलिक को मुझे नहीं याद पड़ता इंटरनेशनल मैच में बहुत ही कम बॉलिंग करते हुए लेटली हमने उनको देखा। तो मेरा नहीं ख्याल बाबर को शोएब मलिक पे वो बॉलिंग कॉन्फिडेंस होगा जो अब इफ्तिखार के ऊपर है, तो ये एक रीजन हो
और
सकती है।
वैसे भी यार जो और वैसे भी जो स्टैट्स हमारे पास हैं इफ्तिखार के, वो ऑस्ट्रेलिया में अच्छे हैं, मतलब ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से वो बेहतर है। अच्छा अगला मैसेज आया है, मोहम्मद अबू बकर का रिकॉर्ड अच्छा है अभी तक, इंशाल्लाह आगे भी अच्छा रहेगा। बिल्कुल जी, क्रिकेट 360 कह रहे हैं अस्सलामुअलैकुम सर, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। हाओ यार, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं, पैट्रियन पे हम लोग कुछ सोच रहे हैं, कुछ उस पर स्ट्रेटजीज वगैरह बनाए। तो बाकी जलाल बताएं आप इस पे उसकी प्रोग्रेस कहाँ तक पहुंची है।
Patreon यार पेट्रियन पे चेक करें आप, पेट्रियन पे हमने वो टीएज एक बनाए हैं जिस हिसाब से आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, और थोड़ा सा अभी टेक्निकल थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं जो काफ़ी ज़्यादातर तो इंटरनेट का मसला है, जो सीधी बात है कि मैं इधर यूएस में बैठा हूँ, मैं पाकिस्तान में बैठा है, तो इंटरनेट का थोड़ा मसला चलता है, तो वो अभी इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो सका कि आप जो है और तीन चार लोगों को भी स्ट्रीम में डालो। वरना लॉन्ग टर्म प्लान यही है कि हम चाहते हैं कि हमारे एटलीस्ट एक सेगमेंट ऐसा हो जिसमें हमारी ऑडियंस को ना हम ले सकें, जो भी पार्ट बनता है, ऑब्वियसली सबको तो नहीं ले सकते, बारी बारी आप रोटेशन पॉलिसी बना सकते हो कि एटलीस्ट 5-10 मिनट जो है ना आपको हम ले लिया करें। तो इस पे कर रहे हैं काम यार, आप पेट्रियन जरूर चेक करो। अच्छा ये अबू बकर साहब कह रहे हैं शायद कि वो चेंजेस की बात कर रहे हैं। यार देखो, चेंजेस लगता नहीं है,
अब तो मुश्किल है, अब तो मैं नहीं समझता क्या हो सकती है चेंज, डिपेंड करता है अगले दो मैच बहुत ही बुरे ना हार जाए, लेकिन इतनी ज्यादा मेरा नहीं ख्याल कोई चेंजेस है।
यार देखो, एक वैसे चीज नोट करने वाली है कि आप रोटेशन पॉलिसी हर किसी बॉलर के साथ कर रहे हो, हारिस को आपने 5 के 5 मैच लगातार खिला दिए, और ये वाहिद बंदा है जो आपकी सबसे अच्छी बॉलिंग कर रहा है कंसिस्टेंटली, और इसको ऑस्ट्रेलिया का भी एक्सपीरियंस है, इसको आप इंजर्ड ना करा दो वर्कलोड पे, क्योंकि बहुत बड़ा बर्डन आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप हसनैन को वापस ला सकते हो टेस्टिंग के तौर पे, या आप क्या कर सकते हो, कुछ एक ना एक चेंजेस तो बन सकती हैं पेसर में।
ये जलाल वर्ल्ड कप के स्क्वाड के लिए बात करें, वर्ल्ड कप स्क्वाड पे चेंज एक्सपेक्ट करें सीरीज की।
अच्छा,
सीरीज
अच्छा,
के बाद जो वर्ल्ड कप, तो मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप के स्क्वाड में तो कोई ऐसे, अगर अगर पाकिस्तान इसी तरह खेलता रहता है तो मेरे ख्याल में वसीम को काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा अपने प्लेयर्स पे, और मेरे ख्याल में ठीक है, ये गुड टू गो।
यार नहीं, मुझे लगता है जो चेंजेस होंगे ना, मुझे खुशदिल के चांसेस अब ब्लीक नजर आ रहे हैं, ठीक है? मुझे लगता है खुशदिल शायद बाहर हो जाए, और ये सीन भी हो सकता है कि उस्मान कादिर मेन स्क्वाड से रिजर्व में चला जाए, ठीक है, और हारिस रिजर्व से मेन स्क्वाड में आ जाए, मोहम्मद हारिस की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है।
वो तो बिल्कुल बात हुई थी।
फिर ये भी डिपेंड करता है कि फ़ख्र ज़मान की इंजरी स्टेटस क्या है। अगर फ़ख्र ज़मान का इंजरी ठीक हो गई है तो उमैर साहब, फिर मुझे हैदर के भी चांसेस कम नज़र आ रहे हैं, फिर हैदर भी शायद रिज़र्व में
नहीं
चले जाएं,
बिल्कुल बिल्कुल
तो
ऐसा ही है
ये चेंजेस हो सकते हैं।
बिल्कुल। बाकी जलाल साहब एक और सवाल है उस पे सवाल पे मैं चाहूंगा कि आप आंसर करें क्योंकि आपके काफी फेवरेट है वो प्लेयर। इमाद का फ्यूचर क्या होगा, आपको क्या लगता है? ये क्रिकेट 360 पूछ रहे।
अच्छा उमेर साहब, ये आपको बताऊं कि कल इमाद वसीम ने बैटिंग की है, कोई सीपीएल में अपनी टीम को फाइनल में भी पहुंचाया है। आई थिंक 15 या 17 गेंदों पे ना उन्होंने 41 मारा है, प्रॉपर शॉट है, सही है, और बॉलिंग तो वो कर ही रहे हैं, विकेट ले रहे हैं। तो आप ये भी देख लो जो मैं आपको कह रहा था कि खुशदिल से फार बेटर स्ट्राइकर आपको इमाद वसीम है, उस पे आपने उस तरह इन्वेस्टमेंट ही नहीं की। जितने चांसेस आपने खुशदिल को एज अ बैटर दिए, उतने अगर आपने इमाद को दिए होते तो शायद वो अपनी जगह एज अ बैट्समैन भी बना चुका होता। खैर क्या हो सकता है अब फ्यूचर यार भाई, उनका एटीट्यूड की वजह से जो समझ आ रही है कि वो टीम से बाहर हैं, परफॉर्मेंस की बिना पर तो आप उनको बाहर कर नहीं सकते थे। और एक मोहम्मद वसीम की क्लियर प्रेफरेंस नज़र आ रही है नवाज़ की, कि वो जब भी इमाद की बात होती है वो कहते हैं कि भाई नवाज और इमाद
नवाज है
सेम
हमारे
टाइप ऑफ
पास।
प्लेयर हैं, और नवाज उनको ज़्यादा वर्सेटाइल लगता है इमाद से, तो इस वजह से वो फ्यूचर थोड़ा ब्राइट ब्लीक नज़र आ रहा है, ब्राइट
बिल्कुल
नहीं।
बाकी जलाल बिल्कुल सही बात है। बाकी उस पे अगर बात करें जो आप मिस्ट्री स्पिनर की बात करें ना अबरार की, उसको भी ट्राई कर लेना चाहिए फिर छठे मैच पे।
यार मैं तो कह रहा था, लेकिन अब मसला हो गया किसकी जगह ट्राई करें ना, अब वो जगह स्लॉट नहीं नज़र आ रही। एक जो डेंजरस काम पाकिस्तान ने पिछले मैच में किया है वो ये किया है कि आपका फोर्थ सीमर नहीं था, दो आप ऑलराउंडर के साथ गए और एक हारिस रहो, मुझे नहीं लगता ये सस्टेनेबल है। आपको आमिर जमाल को एज अ फोर्थ सीमर रखना पड़ेगा, तो एक एक पेसर और आना चाहिए। अब वो पेसर किसकी जगह आएगा, बैटिंग पहले हमसे नहीं हो रही, तो ये ज़रा थोड़ा सा टीम कॉम्बिनेशन में मसला हो गया है मुझे लगता है। तो
SS98 पूछ रहे हैं जी। अच्छा इन्होंने भी बड़ा अच्छा सवाल किया जिसपे आज पूरा ट्विटर भरा हुआ था और मैं भी सोच रहा था बड़ा कि कौन आना चाहिए। कह रहे हु कैन बी अ बेटर रिप्लेसमेंट ऑफ बुमराह, शमी और सिराज? शमी मेरे ख्याल में बेहतर है। हाँ
यार सबसे पहले तो ये बड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज़ ही थी हम सबके लिए कि बुमराह को फिर स्ट्रेस फ्रैक्चर की खबरें आ रही हैं। अब आई डोंट नो, पूरी रिपोर्ट्स तो नहीं आई, लेकिन मेजॉरिटी चांस यही है कि वर्ल्ड कप शायद ये बाहर हो ही जाएंगे जो खबरें आ रही हैं। तो यार मेरे पे अगर जाओ ना उमेर, आई नो शमी बहुत अच्छे हैं, अब आपने एक्स फैक्टर पे जाना ही है ना, शामी इज अ सेफ चॉइस, नो डाउट शामी इज अ सेफ चॉइस। मोहसिन खान अगर फिट है या उमरान मलिक, मैं कहता हूं अगर इंडिया ने रिस्क लेना ही है ना तो उमरान मलिक पे रिस्क ले लो भाई, खिला दो उस लड़के को, उसको बोलो कि यार फाइन लगा दो अगले को।
हाँ यार इमरान मलिक वैसे उसकी वो फास्ट बॉलर तो बहुत है, नो डाउट वो पेस करा रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में अगर उसकी बॉल थोड़ी भी ना घूमी तो उसको उसको काफी पड़ जाएगा,
उसको
तो
घूम यार देखो, अब देख
रिस्क हो
उमेर,
जाएगी वैसे।
इधर माइंडसेट का फर्क है मुझे लगता है इंडिया पाकिस्तान में। आपके हसनैन को और नसीम को कितनी मार पड़ी, आपकी दहानी को कितनी मार पड़ी इस सीरीज में भी, एशिया कप के मैचेस में भी। हमने कभी ये नहीं बोला कि जी हसनैन को 24 रन पड़ गए तो अब हसनैन नहीं खेलेगा, उसको बाहर भेज दो। उमरान के साथ क्या हुआ, 2 मैच बुरे गए उसके, हालांकि कितनी हाइप थी कि जी शोएब अख्तर आ गया, ये हो गया, वो हो गया, शोएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ेगा, सब इतनी हाइप आई। और आयरलैंड के खिलाफ उसने एक मैच आपको जिताया भी, मतलब वो एंड में डेथ बॉलिंग करके, लेकिन आपने उसको बिल्कुल ही गायब करा दिया। मुझे नहीं समझ आई कि ये क्या माइंडसेट था इनका, आवेश से बेहतर मुझे था कि जितना आवेश को चांस दिया था उतना उमरान को दे देना चाहिए था, मुझे ऐसा लग रहा था। अच्छा
जी,
अबू बकर
हाँ
साहब
जी
कह
बिल्कुल
रहे
सही कह रहे
हैं,
हैं। आवेश को तो हमने देखा काफी ज्यादा चांस दिया है, साउथ अफ्रीका से ही उसको दिया था जो जो सीरीज हुई थी इंडिया में, इंडिया में साउथ अफ्रीका, उसमें भी काफी एक्सपेंसिव थे, तो देखते हैं अभी आगे क्या बनता है। अच्छा ये ये बड़ा अच्छा कमेंट किया है अबू बकर साहब ने, आप ही पढ़ लें जलाल, मैं तो इस पढ़ नहीं रहा।
आपके गाल लाल लाल हो रहे हैं मुझे ऐसे लग रहा है। अच्छा, बेस्ट रिप्लेसमेंट ऑफ खुशदिल इज उमैर परवेज, ये बात भी
उमर
ठीक है यार।
परवेज,
अच्छा,
क्या
इनको
बात है
आपको
क्या
पता है
बात
कि नहीं पता, अबू बकर साहब, उमैर परवेज साहब भी लेफ्ट हैंडेड बैटर हैं, ठीक है, राइट
बिल्कुल।
आर्म बॉलिंग करते हैं लेकिन फास्ट बॉलिंग करते हैं, सही है। आजकल अपनी
हाँ
टीम
बिल्कुल
में काफ़ी हॉट भी हैं, लोग इनको टूर्नामेंट्स में बुलाते हैं कि बॉलिंग शॉलिंग कर दें, तो मसला सिर्फ ये है कि थोड़ी फिटनेस इशू है, फिटनेस इशू है थोड़ी।
यार सही बात है, फिटनेस इशू तो बहुत है, पहला ओवर होता है उसके बाद बस हालत थोड़ी खराब हो जाती है, थोड़ा रेस्ट करना पड़ता
ये बात ठीक कर रहे हैं आप कि अगर बॉल ना घूमी उमरान की तो रोहित की घूम जानी है। मैं यही कह रहा हूँ यार, माइंडसेट का फर्क है। देखो, शोएब अख्तर भी जब आते थे या मोहम्मद शमी आते थे, ऐसा तो नहीं इनको मार नहीं पड़ती थी, मार तो डाडी पड़ती थी। इवन वकार यूनस को भी बड़ी डाडी मार पड़ती थी, अगर याद हो आपको। वसीम अकरम ही थे जो इकोनॉमी वाइज
बिल्कुल
अच्छे
सही।
थे। फास्ट बॉलर को अगर आपने विकेट के लिए लगाना है तो यार मार तो पड़ेगी उसको। माइंडसेट का आई थिंक फर्क है। जुशाना कुछ कह रहा है भाई।
यार लगता है हर कोई टेकिंग के मूड पे आया हुआ
भाई जिशान यार, आपको तो पता ही है, फिटनेस फिटनेस के मसाइल हैं, तो रनआउट
यार,
तो होगा।
ये खुद मुझे रन आउट करवाता रहा है, खेलता है इसने मुझे 2 दफा रन आउट करवाया है। तो
अच्छा, एक
अच्छा
कमेंट ऊपर
जलाल
भी
साहब
था।
पाकिस्तान, अच्छा मिस हो गया कोई? अबू बकर भाई का ये कि आमिर आ रहा है क्या?
अच्छा, Cricket360 साहब कह रहे हैं कि भाई मेरा चैनल है, उसके 1.6K सब्सक्राइबर्स हैं, वो शायद
क्या
कह रहे हैं कि
बात
मैं
है
आपके साथ
क्या
काम
बात
करना
है,
चाहता। बिल्कुल यार, आप जो है ना हमारे साथ ट्विटर या इंस्टाग्राम पे भी रीच आउट कर सकते हो। आप हमारे
ठीक है
पेट्रियन का लिंक डिस्क्रिप्शन में शायद होगा, आई
बिल्कुल।
थिंक सो, होना चाहिए, नहीं हुआ तो डाल देंगे वीडियो के
नहीं
बाद। उसको चेकआउट करो, उससे उसको हमने एक वे दिया हुआ है पेट्रियन में कि आप किस तरीके से हमारे साथ काम कर सकते हो, तो वो उसको जरूर आप चेकआउट करें।
ठीक
आप क्या कह
है
रहे थे
बिल्कुल
उमर?
सही बात है। यार मैं क्या कह रहा था, हाँ मैं कह रहा था चले पाकिस्तान और जो इंग्लैंड के मैच में तो काफी डिस्कशन होगी, अब मेरे ख्याल में इंडिया और साउथ अफ्रीका को भी थोड़ा डिस्कस करते हैं कि जो पहला मैच हुआ है, जिला साहब आपने स्विंग देखी है उसमें, बॉल कहाँ से कहाँ घूम रही थी बॉल, क्या ख्याल
बिल्कुल
है?
बिल्कुल देखी है, बिल्कुल देखी है। एक बस ये, मैं इंडिया वाले मैच में आता हूँ, निशान साहब आपसे पूछ रहे हैं कि हारिस सोहेल कंसिडर हो सकता है मिडिल ऑर्डर में या नहीं हो सकता।
यार हारिस सोहेल की बातें तो बहुत हो रही हैं, ठीक है, और उसने परफॉर्म भी किया है नेशनल T20 में मैचेस में, और लेकिन वही बात है मोहम्मद वसीम का माइंडसेट है, मेरा नहीं ख्याल अभी ये लोग इतनी चेंजेस लाएंगे, अगर चेंज लानी हुई तो वही बात है कि आमिर जमाल का थोड़ा सीन बन सकता है, बाकी उसके अलावा वही जो रिजर्व प्लेयर में बैठे हुए वही वाले स्वैप हो जाएंगे, बाकी मुझे ऐसे नहीं लग रहा।
मुझे भी लगता है कि आमिर जमाल अगर परफॉर्मेंस दे गया बैटिंग से किसी एक मैच में भी, तो वो आ सकता है वर्ल्ड कप में। अदरवाइज हारिस सोहेल की बातें हो रही हैं। अच्छा, जल्दी जल्दी से ये भी है कि अबू बकर साहब भी कह रहे हैं हारिस सोहेल ODI में अच्छा है लेकिन T20 में अभी इतना नहीं देखा। यार ये बात आपकी जेनवन है, ODIs में बहुत अच्छा है, और T20 में स्ट्राइक रेट का उनका भी इशू आता है, तो जिस तरह आप शान मसूद की बात करते हो तो स्ट्राइक रेट में उनका भी इशू डेफिनेटली आता है। SS98 साहब बता रहे हैं कि मोहसिन खान NCA में रिकवरी कर रहे हैं इंजरी से। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, पहले भी शायद आपने हमें एक दफ़ा बताया था ये, लेकिन यार वो बॉलर उसमें कुछ अलग लगता है, जिस तरह अर्शदीप में थोड़ा कुछ अलग लगता है ना, उसमें भी थोड़ा एक फीलिंग आती है, वो भी लेफ्टी है और बड़ा अच्छा बॉलर, प्रॉमिसिंग बॉलर लगता है। अच्छा,
यार वैसे ये जो जो इनको सेटबैक मिला, अभी जो मिला ना बुमराह का सेटबैक, बहुत बड़ा है यार,
बहुत बड़ा है,
मतलब बहुत अच्छा बॉलर था बुमराह,
कोई
बहुत तबाही
रिप्लेसमेंट ही
कर
नहीं है
दिया,
भाई, कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है इसी वजह
कोई
से।
रिप्लेसमेंट
अच्छा, पहले बुमराह भी कर लेते। अब बातें ये हो रही हैं बुमराह के बारे में कि भाई प्लान ये था कि साउथ अफ्रीका की सीरीज में ना उसको खिलाना शुरू करेंगे, ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में नहीं खिलाएंगे, ऐसा मैंने सुना है, ठीक है। लेकिन वो जो जिस मैच में बारिश हो गई थी ना, जो 8 ओवरों का मैच हो गया था ऑस्ट्रेलिया,
बिल्कुल।
वहां पर इन्होंने शायद बोला कि जी ओवर्स कम होंगे तो यहाँ पर बुमराह को टेस्ट कर लेते हैं। बुमराह से भी ऑब्वियसली पूछा होगा। अब हाइंडसाइड में लोग ये क्रिटिसिज्म तो करेंगे कि क्या आपने बुमराह को जल्दी तो नहीं खिला दिया, जिस तरह शाहीन पे अक्सर लोग कह रहे हैं कि अभी तक
शाहीन
फिट
की
क्यों नहीं हुआ,
बात
अभी
हो
तक
रही है,
फिट क्यों नहीं हुआ। पहले बात हो रही थी कि न्यूजीलैंड वाले टूर में खेलेगा, लेकिन अब बात हो रही है न्यूजीलैंड वाला टूर भी नहीं खेलेगा। ठीक है, अब आ रहा है कि 15 अक्टूबर को वो ब्रिस्बेन में पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनेंगे, तो शायद वार्म अप ही खेलें। तो अब क्या बुमराह को जल्दी तो नहीं खिला दिया, ये भी एक बहुत बड़ी बहस है। तो बहुत बड़ा लॉस हुआ यार, नो डाउट बहुत बड़ा लॉस हुआ।
जी बिल्कुल। अच्छा यार, यहाँ पे एक और भी बड़ी अच्छी बात यह है कि देखें, अच्छी बात तो खैर नहीं है, लेकिन बात यह है कि देखें, अब शाहीन आता है रिकवरी के बाद, सही है, इंजरी के बाद रिकवर करके आएगा, इतना बीच पे गैप आ गया और डायरेक्ट जा रहा है वर्ल्ड कप में, तो उसकी भी परफॉर्मेंस मेरे ख्याल में 100% तो हमें उसे एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए शुरू में, मतलब कि वो मेरे ख्याल में थोड़ा उसको टाइम लगेगा। क्या
यार
ख्याल
बिल्कुल
है?
लगेगा, देखो अगर वो 15 को स्क्वाड ज्वाइन कर रहा है, 23 को पाकिस्तान इंडिया का मैच है, मुझे तो नहीं लगता मैच खेलने मजा ही होगा। मतलब मुझे तो नहीं लगता कि 23 वाला मैच वो खेल सकता है। अगर वो बंदा 15 को ज्वाइन कर रहा है, बॉलिंग प्रैक्टिस भी नहीं हुई हुई उस तरीके से, मैच प्रैक्टिस नहीं है, मुश्किल लग रहा है भाई, क्या कह सकते हैं। लेकिन आपके
बिल्कुल।
सवाल पे आता हूँ कि इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका वाला जो मैच था, स्विंग बॉलिंग की आप मेरे से पूछ रहे थे, वही यार अनवर अली के अंडर 19 वाले बनाना इन स्विंगर्स याद आ गए मुझे यार। मतलब चाहर ने पहले खेला है बबूमा के साथ, आउट स्विंग आउट स्विंग आउट स्विंग, और फिर एक ऐसा इंड पर मारा है, ओए होए 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 हो। और फिर अर्शदीप की भी यार, अर्शदीप की भी सही स्विंग हो रही थी।
बिल्कुल, काफी स्विंग हो रही थी। और अच्छा, मजे की बात है, ये विकेट सिर्फ शुरू में गिरी है, उसके बाद जब बाद में आया, जो कि मतलब जो लास्ट वाले ओवर्स में जब अर्शदीप आया, तो वहां पे वो उस तरह इतना वो मतलब कि वहां पे इम्प्रेसिव नहीं हो सका जितना शुरू के
देखो पिच
ओवर्स में
इस तरह
थे,
की
पिच
थी ना कि कोई
की
काइंड
कंडीशन
ऑफ
चेंज हो रही थी।
इंग्लैंड की वो नहीं होती कंडीशन जो टेस्ट मैचेस में हम देखते हैं, ओवरकास्ट कंडीशन हो, इस तरह जेम्स जेम्स एंडरसन बॉलिंग करा रहा होता है, वो वाली कहानी लग रही थी। और मुझे लगता है कि यार ऐसी पिच T20 में तो उसकी तुक मुझे समझ नहीं आई कि आप इस पे क्या प्रैक्टिस कर सकते हो। ऑस्ट्रेलिया में तो मुश्किल ही इस तरह की कोई पिच मिले। तो एनीवेज बैटर्स को और साउथ अफ्रीका को तो समझ नहीं आई कैसे डील करना है शुरू में। तो इनिशियली 9 पे 5 आउट हो गए थे 2.3 ओवर्स में, और सारी शॉटें मतलब वाइली रोसो ने भी आके खुली शॉट मार दी, मतलब कोई फुट मूवमेंट नहीं, एज पकड़ा दिया, तो समझ नहीं आई। एंड में वही है कि मार्करम प्रॉपर जो टेक्निक वाला बैट्समैन है वही चला, और टेस्ट में जिस तरह महाराज अक्सर इनिंग्स खेल जाते हैं, महाराज ने स्कोर बनाया, बाकी तो कोई सीन ही नहीं था। और बड़े लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं उमेर साहब KL राहुल की इनिंग्स को, क्या आप कहते हो कि ठीक थी
यार
नहीं ठीक थी, क्या था?
यार, KL राहुल की इनिंग सही थी, जिस तरह के जो सिचुएशन बनी हुई थी गेम की, मतलब के जिस तरह स्कोर भी कम था, ठीक है, चेस करने के लिए आपका रोहित भी आउट हो गया था, कोहली भी आउट हो गया था, तो मेरे ख्याल राहुल सही खेला है, जो जो वहां पे डिमांड हो रही थी उसने उसी तरह खेला है। और मेरे ख्याल में एक्चुअल गेम भी राहुल की ऐसी है, मतलब कि अगर आप राहुल से एक्सपेक्ट करो कि यार वो 150 160 की स्ट्राइक रेट पे शुरू से ही खेले, तो वो मेरे ख्याल में उस तरह इतना सक्सेसफुल नहीं होगा, तो वो
देखो
इस तरह के टेम्परेट में ज्यादा सक्सेसफुल है।
बिल्कुल मेरा भी यही ख्याल है कि अननेसेसरी क्रिटिसिज्म हुआ है इस मैच में, कंसिडरिंग ठीक है वो थोड़ा स्ट्रगल भी कर रहे थे, लेकिन आप बॉलिंग भी तो देखो ना किस तरह की, रबाडा वगैरह, इवन पार्नेल की विकटें नहीं मिली, लेकिन पार्नेल की कितनी
बिल्कुल,
स्विंग हो रही थी।
पार्नर
कंसिडरिंग दिस हम लोग शायद भूल गए यार, हम लोग ना वो बैस बॉल नैरेटिव के चक्कर में, जिस तरह अभी लाहौर वाला मैच भी हुआ है, कंडीशंस को हम शायद भूल चुके हैं। हम कहते हैं कि बस अब अटैक ही करो। वो तो सूर्या कुमार कोई एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ द लाइफ में है कि उसने ऐसी मुश्किल पिच के ऊपर इतनी तेज और इतनी जबरदस्त बैटिंग कर दी। मतलब वो तो एक
बिल्कुल
एक एनोमली लग रही है ना, अलग सी एक चीज लग रहा है बिल्कुल वो बंदा, कि भाई वो आउटस्टैंडिंग वाली बात है उसकी। लेकिन KL राहुल ने मेरा
बिल्कुल,
ख्याल है सिचुएशन के हिसाब से ठीक खेल गया वो।
हाँ बिल्कुल सही है।
लेकिन छह
KL
ओवरों
राहुल,
में 17 रन थे पावर प्ले में, लोएस्ट था ये रन इंडिया के पावर प्ले में, ये भी एक इंडिया का रिकॉर्ड है।
बड़े रिकॉर्ड बना लिए भाई इंडिया ने इस मैच
अच्छा अब थोड़े कमेंट्स की तरफ आते हैं। क्रिकेट 360 कह रहे थे कि अफगानिस्तान का क्या होगा T20 वर्ल्ड कप में, हैं पतले हालात लग रहे हैं भाई जिस ग्रुप में
यार,
वो हैं, क्या कहते हो मेहर साहब?
पतले हालात है, लेकिन जिस तरह एशिया कप में ये खेल गए, इनकी टीम तो काफी अच्छी लगी है मुझे, स्पिनर्स काफी अच्छे इनके आए हैं, मुजीब वगैरह, और खैर इनसे कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं जलाल साहब, अफगानिस्तान की टीम मेरा नहीं ख्याल के काफी इजी टू गो होगी, थोड़ा टफ टाइम देगी उधर टीम
देखो
को।
इनको जो एडवांटेज है वो ये है कि मुजीब, नबी और राशिद ये तो बहुत ज़्यादा BBL रेगुलरली BBL खेले हैं,
बीबीएल खेल चुके
तो
हैं वो।
इनको उन कंडीशंस का पता है। लेकिन आई डोंट नो इनके बैटर्स कैसे कोप करेंगे। बैटिंग का मुझे थोड़ा सा लग रहा है, बॉलिंग में ये शायद फिर भी कर जाएंगे, मुझे इतना उस पर मसला नहीं नजर आ रहा। लेकिन ये अकेली टीम है,
बिल्कुल
एशियन टीम जो उस ग्रुप में डाल दी, आई थिंक अभी तक तो अकेली चल रही है,
यार,
बड़ा डाडा ग्रुप है
अभी
वो।
तो हमारा ग्रुप भी बड़ा टफ होने वाला है जिल्ला जी, अभी पता नहीं क्या बनेगा हमारा।
राबी साहब कह रहे हैं कि नई न्यू बैट्समैन इन बी इन पाकिस्तान साइड फॉर वर्ल्ड कप आई थिंक। यार देखो, हारिस सुहेल की अभी रिसेंट बातें कुछ एक सुनाई दी थी, लेकिन अभी आमिर जमाल आ गया है तो मेरा ख्याल है ये देखेंगे कि अगर आमिर जमाल कैसे बैटिंग में परफॉर्मेंस देता है। खुशदिल की मुझे लग रहा है थोड़े से ना अब डाउटफुल होगी ये सिचुएशन खुशदिल की। मे बी खुशदिल शायद रिजर्व में चला जाए, लेकिन थोड़ा डाउटफुल हो गया खुशदिल का। और जिस तरह मैंने कहा कि हारिस अभी ट्राई नहीं हुआ उमेर साहब एज अ बैटर, तो उसको भी हम
हाँ
ट्राई कर सकते
लेकिन
हैं।
मुश्किल है, उसको ट्राई नहीं करेंगे यार ये लोग,
यार देखो उसको ट्राई
हारिस से
पता है
अगर
किस तरह
बैटर
कर
नहीं
सकते
लाएंगे।
हैं, उसको ट्राई मेरा ख्याल है एक मैच में अगर पाकिस्तान सीरीज जीत जाता है ना, एक मैच में उसको बिल्कुल ट्राई करना चाहिए। रीजन बीइंग कि अब ये लग रहा है कि हारिस शायद मेन स्क्वाड में उसको लाना पड़े, कंसिडरिंग जो रिजवान की फिटनेस का मसला चल रहे हैं थोड़े।
यार हाँ देखते हैं क्या बनता है। एक और बात यार जलाल, अब देखें जिस तरह हम परफॉर्मेंस देख रहे हैं जो पाकिस्तान की ये जो हुई है 6 मैचेस में, हैदर अली की बातें होती थी यार, हैदर अली को चांस देना चाहिए, ठीक है, खुशदिल के बारे में भी बात हो रही है काफी ज्यादा, और ये दोनों अभी परफॉर्म नहीं कर रहे, तो हैदर अली की जगह तो हमें नजर आ जाता है अगर फखर जमान फिट होता है तो वो आ जाएगा, तो खुशदिल का देखते हैं क्या बनता है, आमिर जमाल आ
यार
जाए
देखो,
या
खुश
कोई बैट्समैन लेके आए।
हैदर हैदर पे बड़े क्रूशल है आखिरी 2 मैचेस। मैं कहता हूँ इवन शान के लिए भी क्रूशल है, क्योंकि फखर शान की जगह भी आ सकता है, शान के लिए भी क्रूशल है, हैदर के लिए और ज्यादा क्रूशल है। खुशदिल तो मोर और लेस मुझे लगता है मेन स्क्वाड से तो चला जाएगा, रिजर्व्स में शायद चला जाए या बिल्कुल ही स्क्वाड से बाहर हो जाए। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि एटलीस्ट रिजर्व्स में तो वो चला जाएगा, रीजन बीइंग के आपको फखर ने वापस आना है किसी न किसी की जगह पर, ठीक है। और आमिर जमाल अगर अच्छा आता है तो वो भी आएगा किसी की जगह, तो प्रॉब्लम तो लग रही है। अच्छा आगे चलते हैं कि क्रिकेट 360 कहते हैं कि जी पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में बाउंसेस कैसे खेलेगा, ऐसे ही खेलेगा भाई ऐसे ही खेलेगा
उधर तो हमारे और बुरे हालात हो जाने हैं, उधर तो बॉलें भी आपकी 150 पे आनी है और बॉल भी तेज आनी है, क्या बनेगा भाई, ये बहुत ही अजीब सूरत हाल बनी हुई है।
नाजुक सूरत
बाबर
हाल।
जैसा बैट्समैन अगर स्ट्रगल कर रहा है तो फिर आप और बैट्समैन से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो यार।
अच्छा इस पे
बाबर का हमने एशिया कप में भी देखा, एशिया कप में भी स्ट्रगल करा था
हाँ
जब इंडिया के उसने आउट किया था वो ये भुवी ने, तो देखें यार बस हम सब दुआ कर सकते हैं
देखो, एक
आप क्या कह रहे
इसमें बड़ी अच्छा एक बात की सलमान भट्ट ने, उन्होंने बोला कि यार देखो क्रिकेट में जो रूल्स हैं इस टाइम के ऊपर, आप प्रॉपर तो एक ही बाउंसर करा सकते हो, ठीक है, दूसरा बाउंसर नो
थे।
बॉल है, मतलब आप कंधे से ऊपर वाला बाउंसर एक ही करोगे, उससे नीचे नीचे ही बाउंसर्स रहेंगे, बाकी तो इलीगल डिलीवरी हो जाएगी एक ओवर में। तो वो ये कह रहे थे कि यार अगर आपसे शॉर्ट बॉल नहीं खेली जा रही तो एक बाउंसर आप बर्दाश्त कर लो, लीव कर दो एटलीस्ट, ये तो कर सकते हो आप। लेकिन कहीं ना कहीं समझ ये नहीं आ रही पाकिस्तानी बैटर्स शायद हर बॉल पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब हमें बाउंसर ही होगा, इस वजह से उनको प्रॉब्लम हो रही है।
यार ये भी वजह हो सकती है, एक और वजह मैं सोचता हूँ यार, एक दफा जो बैट्समैन ने लेट्स सपोज एक शॉट मार दिए, ठीक है, तो उसके बाद वो शायद उसका फ्लो बन जाता है तो वो फिर उस तरह रुक नहीं सकता, ना ही वो मतलब ये सोचे कि यार शॉर्ट पिच आया तो मैं छोड़ दूँ।
नहीं, ये बात भी है। अच्छा बड़ी प्यारी इधर कमेंट किया SS98 ने कि भूवी वुड हैव गॉट अ 5 विकेट हॉल इफ ही वाज बॉलिंग एट दैट पिच। बड़ी प्यारी बात की है और बड़ी जेन्युइन बात है कि इस पिच पे अगर भूवी बॉल कर रहे होते तो शायद 4-5 विकेटें पक्की थी। अच्छा SS98 साहब, आपसे मेरा एक सवाल ये है कि ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप में, क्योंकि आप मेरा हाल इंडिया से ही हैं, तो भूवी और दीपक चाहर में अगर ऑप्शन हो तो आप किसको प्रेफरेंस दोगे, ठीक है, ये मुझे जरा कमेंट करके आप बताएं ना कि भूवी और चाहर में से अगर आपको ऑप्शन हो तो आप किसको लेके जाओगे और क्यों लेके जाओगे, क्योंकि चाहर थोड़ी बैटिंग भी करते हैं ज्यादा। अच्छा अबू बकर साहब कह रहे हैं इमेजिन करो भाई कि अगर अफगानी जो है भाई हमारे वो सेमीफाइनल में चले जाते हैं, फिर तो
सेमीफाइनल
भाई
में
कुछ
पहुंच
भी हो
गए
सकता है, फिर तो कुछ भी हो सकता है, फिर फाइनल में भी जा सकते हैं।
अच्छा राबिया जाबेद कह रही है इंडिया इंडिया
राब
दे
राबिया
अस
नहीं
अ
है,
नॉट
राबी है,
ऑफ,
राबी भाई हमारे।
राबी जाबेद, राबी जाबेद ही कह रहा। अच्छा इंडिया दे हैव अ लॉट ऑफ न्यू बैट्समैन बट पाकिस्तान देर आर नो न्यू बैट्समैन, लास्ट 3-4 ईयर्स यार देव, जैसे अभी मैं फॉलो कर रहा था नेशनल T20 जो अभी डोमेस्टिक में हुआ है, तो उसमें मुझे काफी अच्छे प्लेयर्स नजर आए, तो लेकिन मसला ये है कि सारे टॉप ऑर्डर वाले नजर आए
ये
हैं
बात है,
अगर हम T20 के स्पेसिफिक बात
ये
करते
बात
हैं।
है सारी।
तो मेरे ख्याल में जो बैट्समैन तो प्रोड्यूस कर रहा है पाकिस्तान, साहिबजादा, सैयद ताहिर, साइम अयूब, ये सब प्लेयर्स हैं जो कि काफी प्रॉमिसिंग है। अब देखते हैं कि इनकी जगह कैसे बनती है।
देखो
मगर
साहिब
शान
ज्यादा
मसूद
भी पहले ओपनिंग
टॉप ऑर्डर।
करते थे, फिर अब आजकल ये ऑफ लेट हम देख रहे हैं कुछ सीजन में ये मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तैयब ताहिर भी ओपनर थे लेकिन मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर रहे हैं क्योंकि सबको पता है। साइम अयूब भी ओपनर हैं लेकिन हमारी ओपनिंग क्योंकि बाबर रिजवान ने पकड़ी हुई है और वो जाने नहीं दे रहे, तो इस वजह से आपको लग रहा है कि बैटिंग है नहीं। मिडिल ऑर्डर में वाकई थोड़ा सा स्ट्रगल है, मिडिल ऑर्डर प्योर मिडिल ऑर्डर बैटर्स जो हैं उनके उनकी कमी है। तो आजम खान एक ऑप्शन लगती है T20s की हद तक मिडिल ऑर्डर ओवर्स में क्योंकि उसने अभी CPL में भी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है वो। अच्छा CPL में वो पार्टनरशिप
लेकिन
देखने वाली
आजम
है,
खान किसकी?
आजम खान और रकीम कॉर्नवल है जो वेस्ट इंडीज का प्लेयर है, वो माशाल्लाह आजम खान की तरह काफी बल्की और वेट है ना उनका, आजम खान से भी ज्यादा वेट है
अच्छा, दोनों
वो
बल्कि आए हुए।
दोनों एक साथ पार्टनरशिप करेंगे। कॉर्नवल ने 11 छक्के मारे हैं ठीक है, अपनी इनिंग्स में 11 छक्के मारे हैं, दो चौके मारे, और मेरे ख्याल है आजम खान ने भी 50 एक मारी है उसमें यार मतलब बेचारों को डकड़ दिया उन्होंने सही, वो मजेदार पार्टनरशिप लग रही थी, सिंगल का सीन ही कोई नहीं था, सारे छक्के चौके लग रहे थे।
क्या बात है। आजम खान यार वैसे आ सकता है अगर फिटनेस पे थोड़ा काम करे अपनी।
यार
अच्छा
अब
मजे की बात आपको बताऊं, एक बात मुझे याद है, ये जब CPL का दे रहा था PCB ना सबको NOC वगैरह, तो आजम खान का रोका था थोड़ा सा इन्होंने, है
हाँ, इमाद
ना?
को दे दिया
तो
था बड़े
मेरे ख्याल
आसानी
में
से।
हो हाँ, मेरे ख्याल में उसके शायद माइंड में आया हो PCB के यार आजम खान को शायद हम अपने इन टूर्स के लिए यूटिलाइज करें या
हाँ
कुछ
बिल्कुल
इस
यही
तरह।
बात है, यही बात है, उन प्लेयर्स को बड़े आराम से NOC मिल रहे थे जो PCB के स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं थे, तो ये बात ठीक है। अबू बकर साहब कह रहे हैं रिजवान रिकवर हो गया, यार अभी तक तो फुली रिकवर कोई नहीं हुए जो लास्ट न्यूज आई है, लेकिन रिजवान बीन रिजवान बंदा ICU में भी बैठा हुआ खेल रहा होता है, अगले दिन आ जाता है तो क्या कह सकते हैं। अच्छा राबी साहब का तो हो गया ना, ये हो गया जिन ग्राउंड में, अच्छा ये भी ले लेते हैं, कह रहे हैं जिन ग्राउंड्स में पाकिस्तान के मैचेस हैं उनकी बाउंड्री की लेंथ कैसी है। यार पहले तो खबरें आ रही थी कि बाउंड्री बहुत छोटी है, कराची वाली बाउंड्री तो मेरे ख्याल ठीक थी, लाहौर वाली थोड़ी आपको छोटी लग रही है, लेकिन कराची वाली आई थिंक ठीक थी। उमर क्या कहते हैं आप?
यार मुझे वैसा आइडिया नहीं है लाहौर वाली पिच का, कराची वाली का तो है कि वो वाली थोड़ी सही थी पिच, लाहौर
हाँ
वाली का
लाहौर वाला
मुझे
थोड़ा सा
थोड़ा।
मुझे बाउंड्री छोटी लग रही है कराची से, लेकिन कराची वाली आई थिंक ठीक थी। खबरें तो शुरू में आ रही थी कि 60 समथिंग मीटर्स की हो रही हैं। अच्छा एक ये भी बात है कि आजम खान की जब मैं बात कर रहा हूँ ना बाउंड्री से, मुझे याद है कि CPL में बहुत छोटी बाउंड्री है, मतलब 65 मीटर्स पे 6 है, तो वो भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा आजम खान को कंसिडर करते हुए, कि उसके कुछ छक्के मैंने देखे थे जो थोड़ा सा बाउंड्री क्लियर हुए थे, तो शायद बड़े
नहीं
ग्राउंड में
लेकिन
उसका।
आजम खान मतलब अगर हम CPL के अलावा भी आजम खान को देखें तो वो तो सही खेलता रहा है, मतलब छक्के छक्के तो मारता रहा है काफी
छक्के लंबे भी मारता है
आपके
वो
इधर
वैसे,
लोकल पे भी। हाँ तो मेरा नहीं ख्याल वो उसका इतना, उसका उसका इशू सिर्फ एक ही है, फिटनेस है। फिटनेस में काम कर ले तो आ जाएगा।
यार उसका मसला ये भी है ना कि जब आप उसको प्लेइंग 11 में अगर डालते हो ना तो आप उसे फील्डिंग नहीं करवा सकते, फिर आपको उसको एज ए कीपर ही खिलाना पड़ेगा ठीक है, और कीपिंग उसकी उस तरह वाली नहीं है जिस तरह रिजवान की है या हारिस की है, तो वो बड़ा मसला है फील्डिंग के एस्पेक्ट से, तो ये एक है।
आपका जवाब दे दिया भाई SS98 ने, कह रहे हैं दीपक चाहर ऑब्वियसली बोथ आर सिमिलर बट चाहर हैज एन एज विद हिज बैटिंग, ही कैन बैट एट एट एंड प्रोवाइड बैटिंग डेप्थ। अच्छा अच्छा
ठीक
मैं वैसे बोलूंगा ना, मैं वैसे बोलूंगा कुमार के साथ ही जाऊंगा यार। आपका ये सवाल था ना दीपक में से
हाँ
और कुमार में से, कुमार की शुरू के जो ओवर्स होते हैं काफी ज्यादा टफ होते हैं, और अगर हम अगर हम यहाँ पे चाहर को सिर्फ इसीलिए रख रहे हैं बैटिंग का भी अगर उसका है सीन, तो मेरे ख्याल में इंडिया की बैटिंग डेप्थ तो वैसे ही बहुत है, उनको इतनी जरूरत ही नहीं है, उनको इशू ही मेन बॉलर्स का
इस
है,
बात से
वो
तो
अगर शुरू के
मैं
ओवर्स अच्छे
एग्री
करा
करता
दें।
हूँ आपकी कि बैटिंग डेप्थ में शायद चाहर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन भुवी भी थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते हैं, लेकिन चाहर काफ़ी बेहतर बैटिंग करते हैं, लेकिन यार देखो भूवी ना ऊपर से तो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, चाहर ना डेथ में भी थोड़ी बेहतर बॉलिंग करता है भूवी से, तो वो भी एक है।
यार।
और अगर दीपक चाहर इंजर्ड ना होता ना, ये जो उसने बड़ी अच्छी एक दो परफॉर्मेंसेस की थी लास्ट कुछ सीरीज में, आई थिंक वर्ल्ड कप के फौरन बाद वाली जो सीरीज, न्यूजीलैंड के बाद वाली जो, आई डोंट रिमेम्बर कि कौन सी सीरीज थी, लेकिन बड़ी अच्छी वो उन्होंने बॉलिंग और बैटिंग में भी मैच जितवाया था। अगर वो इंजर्ड ना होते तो मेरा ख्याल है वो अभी वर्ल्ड कप स्क्वाड में, मेन स्क्वाड में होते। ये उनके साथ भी थोड़ी सी ट्रेजेडी हुई है। अच्छा अब एक ये भी केस है कि बुमराह अब इंजर्ड हुए हैं। SS98 साहब आपके लिए सवाल फेंक रहा हूं मैं दोबारा, कि अगर बुमराह की रिप्लेसमेंट आप देखते हो, वाई नॉट चाहर इन प्लेस ऑफ बुमराह, क्योंकि शमी के भी तो डेथ बॉलिंग में मसला आता है, तो दीपक चाहर क्यों नहीं खेल सकता, इसका भी जरा बताएं ना। अच्छा वर्ल्ड कप मैचेस की बाउंड्रीज लंबी होंगी भाई, अभी तक जो हमने देखा सुना पढ़ा है कि बाउंड्रीज जो है ना कुछ ग्राउंड में तो 80 मीटर के करीब करीब हैं, तो उधर जरा भागना ज्यादा पड़ेगा मुझे लगता है, इतने आराम से छक्के नहीं लगेंगे। इस जैसे स्पिनर्स की जो आप कह रहे थे ना रोल, वो ज्यादा बढ़ जाता है जब बाउंड्रीज लंबी होती हैं, तो स्पिनर्स गेम में आ जाते हैं।
वो आपको याद होगा यार स्पिनर, इसी बात से मुझे याद है जब वो पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वार्टर फाइनल चल रहा था, कोई मिस्बा
हाँ
ने भी शॉट मारी थी, बड़ी जान मारी थी, लेकिन बाउंड्री पे कैच हो गया था, अफीदी का भी कैच हो गया था।
ऐसे ही है। अच्छा ये इसके बारे में क्या ख्याल है उमेर साहब, क्रिकेट 360 कह रहे हैं बुमराह की रिप्लेसमेंट उमेश यादव हो सकता है।
यार उमेश यादव भी ठीक है, सही है, लेकिन मेरा शामी की तरफ ज्यादा वो बायसनेस है, क्योंकि वो आप अच्छा बॉलर, पेस शेस भी है, वैसे भी सही है उसका सीन,
अब इन दोनों का
काफी
मसला
उम्र है
ये ना है
उनकी।
कि ये T20 फॉर्मेट में इंटरनेशनल लेवल पे तो काफ़ी अरसे से खेले नहीं, अभी उमेश यादव एक मैच में वापस आए थे लेकिन कोई खास इतनी उनकी बॉलिंग लगी नहीं। हालांकि मुझे उमेश बड़े पसंद है, जब से ये आए थे मेरा ख्याल है इंडिया ने ज़ाया किया इनको, ख़ास तौर पर टेस्ट मैचेस में ज़ाया किया इनको, मतलब बहुत अच्छे बॉलर थे लेकिन अब एक्सपीरियंस वाइज नहीं समझ आ रही।
अच्छा, वैसे अगर इंडिया की हम सोचे वर्ल्ड कप में इनकी जो प्लेइंग 11 होगी, उसमें इनके चार ही होंगे ना सीमर्स, पांड्या इनका अच्छा एड ऑन होगा फोर्थ वाला,
पांड्या
जो
का बड़ा
पाकिस्तान
एज है
को
भाई,
चाहिए चौथा।
पांड्या
बहुत
का
एज
बड़ा
है
एज
यार
है।
पांड्या, यार पांड्या ने कितनी गेम इंप्रूव की अपनी यार, मैं तो इस चीज पे भी उसका फैन हूँ
फिटनेस
कि
भी की है
मतलब
भाई
लास्ट
इस
कपल
बंदे
ऑफ
ने इंप्रूव
ईयर्स
अपनी।
मुझे तो लग रहा है फ्यूचर कैप्टन भी यार यही है, जिस तरह आईपीएल में इसने कैप्टेंसी वगैरह की है, जो रोल निभाया है।
यार मतलब इसका भी ना एंड में फिटनेस पे ही आना है मुझे लगता है, इसका कैरियर भी फिटनेस पे मैटर करता है, क्योंकि बेन स्टोक्स को देखो जैसा बेन स्टोक्स बर्नआउट वाला सीन हो गया ना बेन स्टोक्स के साथ भी, पांड्या का भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक टाइम ऐसा आएगा कि इसको फॉर्मेट्स पक्के पक्के डिसाइड करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी लोग बात कर रहे हैं कि पांड्या फॉर्म में आ गए इसको टेस्ट में भी डालो, तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा मुझे लगता है। फिटनेस अगर ठीक रखे तो आप ठीक कह रहे हो कि कप्तानी हो सकती है।
उसमें भी इसने मेरे ख्याल में अभी बोला है ना कि मैं ODI छोड़ दूंगा, वही जो फ्यूचर ऑफ ODI की हम लोग ने जो वीडियोस बनाई हुई है उसपे आई थिंक हमने जिक्र किया है कि हार्दिक पांड्या ने भी कहा है कि यार मैं वर्ल्ड कप के बाद जो 50 ओवर्स वाला आ रहा है उसके बाद मैं रिटायरमेंट ले लूंगा उससे, तो T20 पे फोकस करूंगा,
T20 पे हाँ
इस
ऐसे
तरह
ही
की
लग रहा है।
बातें है
अच्छा
ना।
रिजवान की इनसेन किस्म की कंसिस्टेंसी क्या बता रहे हैं अबू बकर साहब, बिल्कुल यार। हम उमेर ने मेरे से, मेरे ख्याल पिछले एक दो एपिसोड में को पूछा था कि अगर आप स्काई और रिजवान में से अगर आपने रेट करना हो तो नंबर 1 बेटर कौन सा है, तो मैं मेरा आर्गुमेंट ये था कि अभी भी मेरी हिसाब से रिजवान नंबर 1 है, क्योंकि रिजवान बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट है और बड़े मैचों में भी रिजवान परफॉर्मेंस दे देता है, तो सूर्या का अभी ना बड़े मैच में वाला चक्कर थोड़ा सा मिसिंग है, बाकी तो सूर्या टैलेंट वाइज तो सूर्या बहुत आगे है, क्या कहते हो मैर?
बाकी अबू बकर यार टैलेंट वाइज तो सूर्या कुमार अच्छा है, और वैसे भी मेरे ख्याल उसका है, मुझे पसंद है यार, वो काफी अच्छी शॉटें मारता है और स्ट्राइक रेट भी काफी अच्छा है, T20 का मेरे ख्याल में बेस्ट है, सेकंड डाउन आके वो कम्पीट कर रहा है अपनी रैंकिंग में टॉप पे, तो अच्छा है, स्ट्राइक रेट को भी मेंटेन किया हुआ है उसने तो अच्छा। अबू बकर कह रहे हैं
कब ज्वाइन
उमेर
कर
भाई
रहे हो
कब
भाई?
ज्वाइन कर रहा है यार ये अबू बकर साहब यार बस आप दुआ करें,
उम्र
ज्वाइन
निकल
करने वाली तो उम्र
गई,
निकल गई
हालात
है,
निकल
उम्र
गए,
निकल गई
जज्बात
है,
निकल
जज्बात
गए।
खत्म हो गए, जज्बात खत्म हो गए। अबू बकर भाई आपको बड़े मजे की बात बताता हूँ, जब मैं और जलाल छोटे होते थे हम लोग भाई हम लोग रोज खेलते थे क्रिकेट स्कूल के बाद बैठते थे, तो वहां पे अचानक हम लोग यही तो हम लोग यही देख रहे होते थे यार, कब हमारा पंजाब क्रिकेट ग्राउंड था पास, तो यहाँ जाएंगे यहाँ पे हमारी सिलेक्शन होगी, ये होगा वो होगा, लेकिन हम लोग पढ़ाई के चक्कर में इतना पड़े रहे हम
बस
लोगों
पढ़ाई
ने
हमें
कुछ
ले
किया ही
डूबी
नहीं
यार, ये भी अनफॉर्चुनेट है ना,
पढ़ाई
हमें
हमें
चूज
डूब
करना पड़ता है, वो या पढ़ लो या आप क्रिकेट खेल लो, ये दो ही काम हो सकते हैं, एक साथ नहीं हो सकते पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली।
बिल्कुल ऐसा ही है।
अच्छा
बाकी
ये
यार जो लोग हमें भी देख रहे हैं वो लोग हमें सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि रात के 3 बजे भी हम लोग वीडियो बना रहे हैं, तो थोड़ी सी वो सपोर्ट कर ले तो अच्छी बात है।
मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा, ये लोग अगर इंडिया पाकिस्तान से बैठे, ये लोग क्या कर रहे हैं इतनी रात को भाई, कोई और काम नहीं है?
मेरे ख्याल में जनाब बस 3 बजे एंड करते हैं, उसके बाद फिर कल भी आना है हम लोगों ने, कल
बिल्कुल
भी मैच है
बिल्कुल।
पाकिस्तान इंग्लैंड का,
अच्छा जल्दी से ये
कल इंडिया
कमेंट
का भी
पढ़ते
मैच है।
हैं, SS98
जी जी
साहब कह
पढ़ो।
रहे हैं कि मैंने जो चाहर का पूछा था, कहते चाहर भूवी एंड हर्षल आर ऑल सिमिलर पेस, मतलब 130 135 वाली कहानी है इनकी। अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स द टीम मैनेजमेंट वॉन्ट्स अ हिट द डेक काइंड ऑफ अ बॉलर हु कैन बॉल अबव 140 कीपिंग इन माइंड द कंडीशंस, मतलब ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो उस हिसाब से तो भाई फिर शामी ही आपको लग रहा है बेस्ट ऑप्शन, अगर तो ये बात है फिर तो वाकई शामी ही नजर आता है, उसके बाद आई डोंट नो यार, बड़ा मसला है ये तो। आई थिंक मिचेल स्टार्क बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड ऑल थ्री फॉर्मेट्स,
यार
बात तो
मैं
ठीक है,
वैसे मिचेल स्टार्क को भी बोलूंगा, लेकिन ट्रेंट बोल्ट यार,
ट्रेंट
ट्रेंट
बोल्ट भी,
बोल्ट बहुत
ट्रेंट बोल्ट की वो
बहुत
हाइप
खेला
नहीं ना
बंदा है
बनती।
न्यूजीलैंड को लेके, चल यार ये ज्यादती होती है न्यूजीलैंड के बॉलर्स के साथ। आपको याद है शेन बॉन्ड
बिल्कुल यार,
कितना क्लास का बॉलर था यार, उसको वो रिस्पेक्ट उस तरह नहीं मिल सकी जिस तरह ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को मिली, हालांकि वो बहुत अच्छा बॉलर था, बहुत
चलो
प्रॉमिसिंग।
उनकी तो ये समझ आती है, रिस्पेक्ट शायद इस वजह से नहीं मिल सकी क्योंकि वो बहुत कम खेले। ट्रेंट बोल्ट तो बहुत ज्यादा खेल गया, लेकिन इसका लोग अक्सर नाम उस तरह लेते नहीं, हालांकि हर फॉर्मेट में उस बंदे ने इतनी इनसेन परफॉर्मेंस है, और उसके फिटनेस के भी उस तरह मसाइल नहीं रहते जिस तरह मिचेल स्टार्क या बाकी शाहीन वगैरह बुमराह के रहते हैं, वो काफी कंसिस्टेंट होता है, खेलता भी है, फील्डिंग भी उसकी बड़ी जबरदस्त है, थोड़ी बहुत बैटिंग भी अब कर लेता है, तो उस लिहाज से भी है। उमेर को रखो, स्काई को निकालो, अबू बकर साहब कहते हैं है? भाई उमेर का स्टाइल
यार
है शिवनारायण चंद्रपॉल वाला, आप उसको स्काई से ना मिले या मेरे से पूछे। उमेर साहब खेलते थे शिवनारायण चंद्रपॉल की तरह, या आज आज के
यार
दौर
वो
के
भी
फवाद
सही
आलम
था।
स्टाइल, थोड़ा फवाद
नहीं, हाँ कह सकते हैं।
आलम थोड़ा ज्यादा एक्सट्रीम हो गए, लेकिन फवाद आलम शुरू में थोड़ा सा इतना
हाँ
नहीं थे, अब बहुत ज्यादा हो गए, लेकिन उमेर साहब थे सिंगल डबल बड़े प्यारे निकालते थे, बीच में एक का चौका छक्का हो जाता था, मतलब मिडिल ऑर्डर बैट्समैन में जरूरत थी यार उमेर तेरी।
यार बस यार वही बात है, हम लोग थोड़ा लेट हो गए काफी। अब जो हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं हो सकते यही जरिया बन जाए, बोले यार आपके एनालिसिस इतने अच्छे हैं, आप लोग ही आके खेल रहे
खेलने के लिए तो नहीं देंगे,
हैं।
आप आपका स्कोप बड़ा है, मैं बताऊं हमारी डेटा एनालिसिस वाली टीम बड़ी मतलब पतली लग रही है,
हाँ
आप
वो
डेटा साइंटिस्ट हैं,
ये बिल्कुल
आप टीम के साथ डेटा एनालिसिस करें जाके, आप पता नहीं क्या कर रहे हैं यार, हैं?
यार बिल्कुल सोचते हैं इस पे भी, करते हैं
अच्छा
इस पे
मोहम्मद
काम।
अबू बकर साहब कह रहे हैं कि छत पर सोए हुए हैं, हैं भाई छत पे सोए तो
वाह
नहीं हुए यार, सोते हुए
मौसम तो अच्छा है। अबू बकर आप रहते किधर है, पाकिस्तान में मतलब अगर है तो किस शहर में?
अच्छा कह रहे हैं जी स्टार के यॉर्कर्स का रिप्लाई दिया था फखर ने, भाई
बस वही दो
फखर ने
छक्के
वो
हर
छक्के
जगह
तो
नजर
बड़े
आते
तारीखी
रहते
मार दिए थे, फिर तारीखी हमें वेड ने भी मार दिए
हैं। तारीखी तो हमें हसी ने भी मारे हुए, माइक हसी ने।
मुल्तान में रहते हैं भाई ये, मुल्तान में तो यार मौसम पता नहीं फिर अच्छा होगा नहीं होगा, मुल्तान में तो गर्मी होती है। अच्छा उमेर भाई आपकी वीडियो अपलोड करने की बात कर रहे हैं, आई होप
यार
क्रिकेट की
वीडियो
वीडियो की
हाँ
बात कर रहे
करेंगे।
हैं। आजकल काफी ऑडियो वीडियोस लीक हो रही
हाँ नहीं, अल्लाह खैर करे, ऐसी कोई वीडियो है नहीं जो लीक हो के इतनी
हैं।
वायरल हो जाए। तो ये है कि वीडियो लगाएंगे यार, हम लोग ऐसा सोच रहे हैं जैसे जलाल भी खेलते हैं US में क्रिकेट, तो हम लोग सोच रहे हैं कि शॉर्ट्स वगैरह बनाएं या कोई ऐसा मैच के हम लोग वीडियोस बनाएं, ताकि आप लोग उस पे हमें रिएक्शन दें।
नहीं, उन्होंने तसीह कर दी है, क्रिकेट की बात ही कर रहे हैं।
अच्छा सही। तो जिनाल साहब 3 बज गए।
बिल्कुल सर,
आज
3 बज गए। आज हैकर्स ने करनी है भाई ऑडियो लीक। आज जुम्मे को करनी थी यार, आई थिंक जुम्मे को करनी थी। चलो देखते हैं क्या होता है उसका भी, देखते हैं पॉलिटिक्स की बातें अब इधर क्या करें हम।
फिलहाल आप मुझे बता रहे थे यूएस में भी कोई फार्मर वाला सीन चल रहा है, बात हो रही थी आपसे, वो क्या सीन था?
हाँ नहीं, वो प्रोटेस्ट नहीं था, मैं आपको ये बता रहा था। मैं आज गया हुआ था फार्मर्स वाला का कोई, वो एक फार्मर्स मार्केट लगती है उधर, काइंड ऑफ समझ लो वॉलंटियर वर्क ही था, जो मुझे उधर जाके पता लगा कि वॉलंटियर वर्क है।
उसके बाद तो आप एकदम वापस आ गए होंगे जब आपने सुना।
नहीं, बैठना पड़ा यार, 2-2.5 घंटे बैठे। अच्छा एक्सपीरियंस था यहाँ पर भी। पाकिस्तान में तो फार्मर्स बेचारे वो खजल हो रहे हैं, यहाँ पे फार्मर्स अभी तक चलो कुछ तो बेहतर ही चल रहा है।
इधर तो यार प्रोटेस्ट चल रहा है इस्लामाबाद में, बड़ा बड़ा जोर शोर से, देखते हैं अल्लाह खैर करे।
चलो भाई अल्लाह खैर करे। ओके जी, क्रिकेट 360 साहब अल्लाह हाफिज, आप हमसे कांटेक्ट करें ना
जरा। ओके जी अबू बकर साहब अल्लाह हाफिज, क्रिकेट 360 अल्लाह हाफिज।
ओके जी उमर साहब गुड नाइट, सो जाएं आप।
ओके जलाल सर
अल्लाह हाफिज,
बिल्कुल जी ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।